ono gyan jimin anda shikman hai jiran shara ke chak shran jamne jas mein shuru ho gaya sri chaitanya mano vistam sthapitam yena bhuvale swayam rupada amen dadati subhata jai shri krishna chaitanya prabhu nityanand sadvait gadata shiva sadgo gaur bhakto hare krishna 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 hare hare पहले श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे जिसमें ज्ञाता ज्ञे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान इत्यादि इस प्रकार से प्रश्न पूछे थे। कैन वी हैव सम बेटर सिटिंग अरेंजमेंट कि सबके साथ आई कांटेक्ट हो पाए। फील्ड के विषय में क्षेत्र के विषय में हमने ये चर्चा किया था कि जैसे आप किसान का एग्जांपल हमने लिया था कि आप उसमें जो बोएंगे आपको वही मिलेगी सीधी सी बात। सो क्षेत्रज्ञ की जब बात हुई तब एग्जांपल के रूप में हमने चर्चा किया था कि जो उस खेत है तो क्षेत्र है लेकिन किसान जो है वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन क्षेत्रज्ञ वो जो किसान है वो बाजू वाले खेत में क्या हो रहा है उसके परिचित नहीं है या तीसरे खेत में क्या हो रहा है उससे परिचित नहीं है। उससे केवल उस नगर का जो मुखिया है वो परिचित है या वो राजा है वो परिचित है। जैसे अपार्टमेंट के एग्जांपल के रूप में हमने चर्चा किया था कि अगर ये पूरा बिल्डिंग एक ही ओनर का है एक ही व्यक्ति इसका ओनर है तो उसको सब पता है कि कौन से कमरे में कहाँ पर क्या है। लेकिन मुझे ये किराए पर दिया है तो मुझे केवल इतना ही पता है किस कमरे में क्या है। सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। यस सो यू हैव टू अरेंज द सिटिंग अकॉर्डिंगली और देन द चेयर्स कैन गो बैक साइड। वॉट एवर आपको जैसे कंफर्टेबल हो। एक्चुअली ये आवश्यक बात है इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि आई कांटेक्ट होना अच्छा है। नहीं जो क्या होता है कि फिर वो ध्यान नहीं रहता जो भी हम सुनते हैं ना तो वो हम समझ नहीं पाते। अगर सामने हमारी आंखों के सामने कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम समझ नहीं पाते। सो जैसे जो व्यक्ति जैसा बोएगा वैसा उसको मिलेगा। जैसे समझ लो कि उसको आम का बीज डाला है तो उसको मैंगो खाने को मिलेगा लेकिन किसी ने करेला का बीज डाला है तो उसको तो करेला ही मिलेगा। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के आधार से इसको समझता है या पाता है परिणाम। आगे के जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि 13वें अध्याय में मैं आपको उदाहरण दे देकर समझाऊंगा सब कुछ प्रयास करूंगा और प्रभुपाद भी अपने कई उदाहरण प्रस्तुत किए तात्पर्य में। लेकिन अगर आपको नहीं पता पड़े समझ लो कि उदाहरण के पश्चात भी आप नहीं समझ पाए तो आप शर्माइएगा मत पूछिए फिर से बताइए प्रभु मैं ये चीज को ठीक से समझ नहीं पाया बताइए बस विल शेयर अगेन हम फिर से बात करेंगे उस पर। सो चौथे अध्याय में चौथे श्लोक में समरी के रूप में संक्षिप्त में चर्चा हुई थी। नाउ जो प्रभुपाद के तात्पर्यों में चर्चा होती है वो हमने एक्चुअली बताया था कि पहले श्लोक नंबर 6 में बॉडी शरीर जो है किस तरह से बना हुआ है सात से बीस के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या परिवर्तन होते हैं, फिर 21, 22 और 6, 21, 22 उसमें कैसे कब और कहां पर शरीर या क्षेत्र का निर्माण होता है, फिर 14 से 18 और 23 में क्षेत्रज्ञ को पहचान करना, क्षेत्रज्ञ कौन क्षेत्रज्ञ है, और 14 से 18 के बीच में चर्चा करेंगे कि उस क्षेत्र का क्या प्रभाव क्या है। ये संस्कृत ज्ञान ने आपको पिछली बार चर्चा की थी अलग अलग विषयों की, पांच विषय जो भगवान ने यहाँ पर लिखा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेक्स्ट नंबर 5।
विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकाल के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है।
हाँ, तो ये प्रॉपर स्टैंडर्ड है। जब आप कभी कोई व्यक्ति को कुछ बताते हो प्रवचन के माध्यम से या किसी को गाइड करते हो, तो ये तरीका है। क्या तरीका है कि आप दूसरे जो हमारे आचार्य है उसका आप बताओ कि देखो इन्होंने ऐसा लिखा है, शास्त्र का उदाहरण दिया जाए। आप शास्त्र के आधार से बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। कई बार हम भक्तों को कहते हैं कि अगर समझ लो कि दो भक्त किसी एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दो भक्त, दोनों भक्त प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ के आए हुए हैं और दोनों भक्त का ओपिनियन डिफरेंस आ रहा है। एक भक्त ऐसा कह रहा है, दूसरा भक्त ऐसा कह रहा है, तो अभी उसमें कौन से भक्त की बात मानी जाएगी? वो भक्त की बात मानी जाएगी जो सैद्धांतिक रूप से बात कर रहे हैं, अर्थात जो शास्त्र का आधार लेकर के प्रभुपाद का रेफरेंस लेकर के जो बात करेगा वो व्यक्ति को। इसलिए हमेशा अगर आपको ये समझना है कि मुझे कभी भी निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आए, समस्या नहीं आए, तो उसके लिए आपको सिद्धांत को अनुसरण करना पड़ेगा। सिद्धांत का अर्थ होता है शास्त्र के आधार से। तो यहाँ पर भगवान भी वैदिक शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं। इस डिस्क्राइब वेरियस सिद्धिस ऋषियों के द्वारा और वेदों में इसका वर्णन है। किसमें है, किसके विषय में? नॉलेज ऑफ द फील्ड इफेक्ट, क्षेत्र, क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के विषय में ऋषियों वेदों ने बताया हुआ है। पहले तीसरे श्लोक में भगवान ने अभी अभी बोला था कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मत है, ऐसा बता दिया कि मेरा मत है। लेकिन अपने ही मत को स्थिर करने के लिए भगवान शास्त्र का निर्देश दे रहे। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते, somebody can read the supreme personality of Godhead, Krishna is the highest authority in explaining this knowledge. Okay, go ahead, it's just lying. Still as a matter of course, learned scholars and standard authorities always give evidence from previous authorities. Krishna is explaining this most controversial point regarding the duality and non-duality of the soul and the super soul by referring it to a scripture, the Vedanta, which is accepted as authority. Authority के रूप में वेद को स्वीकार किया गया है और ये most controversial point के रूप में बताया है। Most controversial का अर्थ क्या होता है कि इस बात को लेकर के दो प्रकार के मत सारे विश्व में विद्यमान है, भगवान और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में भेद है या भेद नहीं है। तो दो प्रकार के लोग मानने वाले, एक मानते हैं कि भेद है, विशेष करके वैष्णव ये लोग मानते हैं कि भेद है, और जो निराकारवादी है, मायावादी है, शंकराचार्य के फॉलोअर, वो कहते हैं कि दोनों एक ही है, परमात्मा और आत्मा ये दोनों एक ही है। तो ये मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट के विषय में भगवान वेदांत सूत्र को भी अथॉरिटी के रूप में बता रहे हैं। तैतरीय उपनिषद का प्रपद ने एग्जाम्पल भी दिया है कि शास्त्र में सब जगह पर इसका वर्णन है, तो इसमें व्यष्टि और समष्टि सिस्टम का चर्चा किया है। वेल वेदांत सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है फॉर्मूला, जैसे इस्कॉन का फुल फॉर्म है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो ये सूत्र हुआ फॉर्मूला, इसका शॉर्ट बना दिया इस्कॉन। तो इस तरह से वेदों में जितना भी नॉलेज है उसको शॉर्ट फॉर्मूला के रूप में यूज किया गया, सूत्र के रूप में, वो है वेदांत सूत्र, देयर इज वेदांत सूत्र। वेद विशेष करके वेद, चार वेद, चारों वेद का समरी सूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में मीन शॉर्ट फॉर्म, सबके शॉर्ट फॉर्म है, उसको एक्सपांड करना पड़ता है। जैसे इस्कॉन तो सूत्र, लेकिन इसको फुल फॉर्म होगा तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वेदांत सूत्र इज अ सूत्र फॉर्म, जैसे जन्माद्यस्य यथा, केवल दो ही शब्द है जन्माद्यस्य यथा, तो उसका अर्थ क्या होता है, भगवान से सब कुछ प्रकट होता है। फिर अथादो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो ये इस तरह से सूत्र के रूप में बताया गया है। सो प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि ऐसे शास्त्र को केवल भगवान के भक्तों के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। एक लेक्चर में प्रभुपाद ने ऐसा बताया था कि तर्को प्रतिष्ठो श्रुति विभिन्ना नासाव मुनि यस्य मतम न भिन्नम, ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषिभिर बहुधा गीतम, इस श्लोक में ऐसा है ऋषिभिर, अर्थात ये जो ऋषि लोग आपको संदेश दिए, फिर भी महाजन को अनुसरण करना ये शास्त्र का अंतिम निर्णय है। जो वेदांत सूत्र में है उसका जो भाष्य है वो है श्रीमद् भागवत, वेदांत सूत्र पर जो भाष्य है वो है श्रीमद् भागवत, और उसमें लिखा गया है कि महाजनो ये न गत संबंध, अर्थात वैष्णव का अनुसरण। क्यों? क्योंकि परम सत्य को समझने के लिए तर्को प्रतिष्ठो, बहुत सारे तर्क अगर किया जाए, बहुत सारे आप केवल तर्क करते रहोगे सत्य को समझने के लिए, तो एक व्यक्ति आपको दूसरा अच्छा तर्क दे करके आपको हरा देगा। तर्कों में ऐसा होता है, तर्क में आर्ग्यूमेंट्स, अब मैं आर्ग्यूमेंट दिया तो मैंने मेरी बुद्धि का उपयोग करके अच्छा बोल दिया, लेकिन फिर निधि के पास अच्छी आर्ग्यूमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो हार गए, तो फिर वो सीरीज विनर, आप जीत गए, लेकिन आपसे अच्छे आर्ग्यूमेंट इनके पास है, तो इसलिए तर्क के आधार पर परम सत्य को नहीं समझा जा सकता। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतया विभिन्ना, और श्रुतियां बहुत सारी है, क्योंकि कई शास्त्र ये बताते हैं, कई शास्त्र ये बताते हैं, बहुत सारी श्रुतियां हैं, तो श्रुतया विभिन्ना, नासाव मुनि मतम न भिन्नम, और जब तक मेरा थीसिस आपके थीसिस से अलग नहीं आता है तब तक मुझे मुनि का उपाधि नहीं मिलता है। नासा मुनि यस्य मतम न भिन्नम, तब तक कोई व्यक्ति मुनि नहीं बनता जब तक उसका मत भिन्न नहीं आता, मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग नहीं आता तब तक मुझे मुनि नहीं बताएगा, PhD वो नहीं मिलेगा। नासा मुनि यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, क्योंकि धर्म का जो तत्व है वो बहुत ही गुह्य है, बहुत ही मुश्किल है इसको समझना, नोबडी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गत स्वतंत्र, इसलिए महाजन जो वैष्णव लोग है आगे बढ़ गए, उनके पद चिन्हों पे चलना ही हमारी सफलता का कारण हो सकता है, उसी से हमें सफलता हो सकती है। महाजनो ये न गत स्वतंत्र, आप समझे, तर्क प्रतिष्ठा से नहीं होगा, श्रुतियां विभिन्न श्रुतियों के कारण उसके माध्यम से नहीं होगा, ऋषि मुनियों के द्वारा भी नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? ये जो बड़ा गुह्य है धर्म से तत्व नीतम गुहायाम, बहुत गुह्य है, महाजनो ये न गत स्वतंत्र। तो महाजनों का, वैसे 12 महाजन है तो उनमें से उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो उनको फॉलो करना चाहिए, बारह महाजन की पहले एक बार हमने चर्चा की थी, सो आई डोंट रिपीट दैम। कौन है बारह महाजन? सो कृष्ण ये रेफरेंस देते हैं शास्त्र का अपने आधार को स्थापित करने के लिए। चैतन्य उपनिषद का जो उपयोग हुआ है उसमें दो प्रकार के सिस्टम का वर्णन आता है, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। व्यष्टि और समष्टि का अर्थ अगर हम समझे, ये सिस्टम किसके लिए है? सत्य को समझने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए। व्यष्टि सिस्टम, समष्टि सिस्टम। व्यष्टि में क्या होता है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को ध्यान करता है और उसके आधार पर वो परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। और समष्टि का सिस्टम कैसा होता है? जिसमें व्यक्ति परमेश्वर को समझता है, उसके आधार पर अपने आप को समझता है। आप समझे? पहले व्यष्टि में व्यक्ति अपने आप को समझता है, आत्मा को समझने का प्रयास करता है और उस आधार पर भगवान को समझने का प्रयास करता है, उसके अनुभव के, उसके ज्ञान के अनुसार। व्यष्टि सिस्टम होता है उसको, फर्स्ट अपने आप पर मेडिटेट करता है, पहले अपने आप को जानने का प्रयास करता है और फिर जब वो जान लेता है फिर भगवान को ढूंढता है। और दूसरा होता है समष्टि, जिसमें भगवान को पहले जाना जाता है और भगवान को जानने के पश्चात फिर वो अपने आप को पहचान लेता है कि मैं कौन। एक तरीका है समझने का। एग्जाम्पल समुन्दर है, समुन्दर को ये व्यष्टि में क्या होता है कि पहले आपको समुन्दर का बूंद मिलेगा और फिर उस बूंद के आधार पर आप अनुमान लगाओ कि समुन्दर कैसा है। और फिर दूसरा सिस्टम में समुन्दर के पास जाकर के आप ये समझ पाओगे कि बूंद कैसा होगा। लाइक दैट इज दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? आई थिंक इट्स सिमिलर। लेकिन देयर आर टू डिफरेंट सिस्टम्स आर गिवन। एक में अपने आप को मान समझता है, फिर प्रकृति को भी समझता है, क्षेत्र को समझता है। लेकिन दूसरा होता है जिसमें वो प्रकृति को पहले समझता है फिर अपने आप को समझता है। ये दूसरा तरीका है।
तो ये सिस्टम क्यों है?
वेदों को समझने का सिस्टम है। चैतन्य उपनिषद में बताया है कि ये दो अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। कि इस तरह से भी स्टूडेंट होते हैं कि जो इस थियरी को फॉलो करने वाले, तो उनका पूरा सिस्टम, उनका गुरुकुल, उनका स्टडी, उनका एजुकेशन सब उस आधार पर चलता है। और ये दूसरे सिस्टम है, तो उसका सारा स्टडी, उसका एजुकेशन सब इस आधार पर चलता है। वेदों को पढ़ने वाले लोगों की बात हो रही है। टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड एंड आवर सेल्व्स। काशी में होगा शायद, काशी में होगा व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। पांच प्रकार के कोष का, जैसे समझ लो कि जैसे कोष को बोल सकते हो, जैसे केला है, केला के ऊपर उसका छिलका है, ऐसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें दो दो छिलके होते हैं। कई बार दो दो छिलके होते हैं, वो हटाना पड़ते हैं, एक छिलका भी हटाओ फिर दूसरा छिलका भी हटाओ। तो ऐसे जैसे नारियल है तो उसका लेयर होता है लेकिन उसके अंदर पानी होता है, तो ऐसे लेयर्स होते हैं। तो इस तरह से पांच प्रकार के कवरिंग है या फिर लेयर्स है जिसके आधार पर हमारा चेतन का विकास होता है। तो इसको पांच अलग अलग तरीके से समझा जाता है जीवात्मा को लेकर के व्यष्टि सिस्टम में, जिसमें पहला होता है अन्नमय। अन्नमय का अर्थ होता है कि जिसमें जीवात्मा का एक ही उद्देश्य रहता है, वो भोजन को अपने अन्नमय एक्सपीरियंस, जिसमें हरेक व्यक्ति में जीवात्मा हरेक वस्तु को भोजन की दृष्टि से देखेगा और सब उसको खाने का, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पशु होते हैं, यू नो लाइक एनिमल्स और लाइक दैट, सो वो पहले नहीं ये खा सकते है? नहीं खा सकते, हटाओ इसको, ये पहले वो ट्राई भी मारते हैं, मतलब ट्राई भी कर लेते हैं, चाटते हैं, खाने का नहीं, हटाओ, तो इसको अन्नमय बोलते हैं। वो केवल खाने, उनके लिए खाना ही लाइफ है, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ भी दो सीधा मुंह में डालता है, वो अन्नमय होता है, कुछ भी दो वो जो सीधा मुंह में ही डालेगा, उसको नहीं पता है इसको जीता है खाने के लिए, उसको उससे आगे कुछ नहीं पता, दैट्स अन्नमय। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो पांच है, वो पांचों को हम डिस्कस करेंगे। एक है अन्नमय, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व के लिए भोजन पर आधारित रहना। दूसरा होता है प्राणमय, जिसमें जीव अपने आप का अस्तित्व बचाए रखने के लिए, उसको संभालने के लिए व्यक्ति जीता है। फिर दूसरा, उसके बाद होता है, तीसरा होता है ज्ञानमय। तो ज्ञानमय में उसमें थिंकिंग फीलिंग विलिंग ऐड हो जाती है, उसके ऊपर की विकसित चेतना, अन्नमय से ऊपर चेतना विकसित हुई तो प्राणमय, प्राणमय की चेतना विकसित हुई तो ज्ञानमय, ज्ञानमय से जब चेतना और विकसित होती है तो उसको बोलते विज्ञानमय। प्रभुपाद कई बार ज्ञानमय को मनोमय भी बोले, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और विज्ञानमय जो है वो है आत्मा और शरीर का अंतर, वो जानता है, वो समझता है आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, उस चेतना में उसको विज्ञानमय अवस्था बोलते हैं, जीवात्मा की ऐसी चेतना है। और विज्ञानमय के आगे पांचवा जो है वो है आनंदमय। तो आनंदमय जो है वो वास्तव में कृष्ण का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप, वो भगवान स्वयं आनंदमय है। और आनंदमय तीन गुणों से पर होता है, दिव्य आनंद। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है और जब वो भक्त बन जाता है तो उसकी चेतना पूर्ण रूप से जब विकसित होती है उसको बोलते हैं आनंदमय। तो चेतना का विकास इस तरह से होता है अलग अलग रूप से। एक थिंकिंग विलिंग फीलिंग उसके लिए। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के रियलाइजेशन है। जैसे बुरीजन प्रभु इसका एक एग्जांपल देते हैं, सो आई एम यूजिंग दैट। ऑल फाइव आर प्रोग्रेसिवली डेवलप्ड स्टेजेस ऑफ सब्जेक्टिव इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये पांचों जो चेतना के विकास वो प्रोग्रेसिव डेवलप स्टेजेस है, अर्थात क्रमिक एक एक करके चेतना का विकास जो होता है उस अवस्थाओं का वर्णन है इसके अंदर। लेकिन वो सब्जेक्टिव है, आर ऑल्सो ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड्स एनर्जी इन विच ब्रह्मन द एब्सोल्यूट और द ग्रेटेस्ट इज रियलाइज इवन इफ इनडायरेक्टली और रिलेटिवली। मंडन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे कैसे कि समझ लो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस दैट नेवरदलेस हैज ऑब्जेक्टिव एक्सिस्टेंस। एग्जाम्पल के रूप में एक व्यक्ति का अपने जन्म के आधार पर अपने देश के साथ संबंध, ये एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है समझने के लिए इसको। एक नागरिक या सिटीजन, जो सिटीजन होता है नागरिक, वो स्वयं उस शहर का है ये खुद नहीं डिसाइड करता, हाउ डू आई इसको मैं आई कैन एक्सप्लेन इट इन द अदर वे. अ सिटीजन डज नॉट क्रिएट द कंसेप्ट ऑफ बिलोंगिंग टू दैट कंट्री. अगर मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं भारत का पहचान या मेरा मैं भारतीय हूं एक सिटीजन के माध्यम से, इसको मैं खुद इसको बनाता नहीं हूं. ये मेरी पहचान कि भाई मैं कौन हूं, मैं भारतीय हूं, ये इसको पहचान मैंने नहीं बनाई, ये मैं नहीं बनाया पहचान. सिटीजनशिप देयरफॉर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज अ रियलिटी. मीन्स नागरिकता जो है वो अपने आप में एक अलग वस्तु है मुझसे. मैं नागरिक हूं, नागरिकता अलग वस्तु है, लेकिन नागरिकता जो है वो सबके लिए अप्लाई होती है जो इस सिटी के ये कंट्री में रहता है, सबके लिए अप्लाई होती है. लेकिन मैं इसको बनाने वाला नहीं हूं. सो हाउएवर अ ह्यूमन बीइंग हु पजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस विल आइडेंटिफाई विथ हिज कंट्री एंड कंसिडर हिमसेल्फ एज इंडियन और अमेरिकन. अर्थात जो व्यक्ति की चेतना विकसित है, जो ये समझ सकता है कि भारत देश में रहने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता का सम्मान दिया जाता है, इसलिए क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है इसलिए मैं भारतीय हूं. लेकिन सड़क यहां से नीचे जाओगे तो एक कुछ कुत्ते भी है बाहर, उस साइड कोने में जाओगे तो कुछ बंदर भी मिल जाएंगे. अब ये बंदरों को ये नहीं पता कि इनको अगर वो चाहे तो उनको भी इंडियन पासपोर्ट मिल सकता है, उनको नहीं पता. ये उनका जन्म इंडिया में हुआ है, वो इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को भारतीय होने का दावा नहीं करते. जैसे पेड़ आपके सामने दिख रहा है, ये पेड़ जो है ये भी भारतीय है. तो नागरिकता और जीवात्मा मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति, ये दोनों अलग अलग है ना. वो है तो वही कंट्री में रहने वाले, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते इसको कि वो भारतीय. हम लोग मानते हैं. ये एग्जाम्पल किस तरह यूज किया जाता है, चेतना के विकास के लिए. हमारा चेतना का विकास, जिसकी चेतना विकसित होती है उसके आधार पर उसका अनुभव, उसका ज्ञान इत्यादि बढ़ता है, चेतना के आधार पर. सो अन्नम इज दैट क्लियर? इट्स नॉट डिफिकल्ट. ये पांच लेयर, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, स्टेप बाय स्टेप. तो ये उन लोग का चेतना का विकास के आधार पर उनका कैटेगराइज है. आत्मा का इसका कोई लेना देना नहीं, आप समझे ना, उसकी चेतना का विकास. यस,
आत्मा
की तो एक ही यूनिट है
सबके,
सब में सारे प्राणियों में, तो इनका ये विकास तो होता है उसमें कौन सा फैक्टर काम करता है?
इग्नोरेंस, इग्नोरेंस
का फैक्टर काम करता है. यस, सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही होता है ये, क्योंकि अज्ञानता आत्मा के शरीर के साथ संबंधित नहीं होती है. अज्ञानता आत्मा की प्रॉब्लम है. अभी उस प्रॉब्लम के आधार पर फिर अन्नमय शरीर मिलेगा, प्राणमय शरीर मिलेगा, ज्ञान. लेकिन अज्ञानता इज द प्रॉब्लम. अज्ञानता किसको बोलते हैं? भगवान को भूल जाना, इसको अज्ञानता बोलते हैं. तो चेतना का विकास, अगर मैंने शायद आपको चर्चा किया था इसके विषय में पहले. एनीवे, आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ. समझ लो कि सबसे विकसित चेतना, जैसे थर्ड चैप्टर में शायद मैंने बताया था, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली, इस वृक्ष की जो चेतना है बहुत ही तुच्छ है. फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर वो अन्नमय आता है, फिर प्राणमय आएगा, आगे बढ़ेगा ज्ञानमय. तो उसमें फिर थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, थोड़ा फिलोसॉफी यूज करेगा, थोड़ा थिंकिंग, विलिंग, ये सब यूज करेगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनेगा जैसे होते लोग. उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से उसका चेतना का विकास होता है. ये अंडरस्टैंड शरीर आत्मा का अंतर, बड़ी मुश्किल से ये पता पड़ जाता है. तो पहले तो 84 लाख योनियों में से घूमते 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 मनुष्य बनना पड़ता है चेतना का विकास के आधार से. और उसी चेतना के विकास के आधार से फिर वो व्यक्ति ये विज्ञानमय अवस्था तक पहुंचता है जिसमें शरीर आत्मा को समझता है, फिर उससे धीरे धीरे ज्ञान और कर्म की चेतना उसे दूर मुक्त होकर के भक्ति में जुड़ता है। जैसे वर्णाश्रम में आता है तो वर्णाश्रम में शूद्र चेतना, उसके बाद वैश्य चेतना, उसके ऊपर आता है क्षत्रिय चेतना, उसके ऊपर आता है ब्राह्मण की चेतना, उसके ऊपर आता है फिर वैष्णव की चेतना। विकास विकास होता जाता है, विकसित होता है, और वैष्णव की चेतना में फिर वापिस दास्य शांत, फिर दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर ये चेतना का विकास हो रहा है। यद्यपि भक्ति के मार्ग में चेतना का विकास नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रगति हो रही है उसमें। भक्ति तो सभी रसों में एक समान रूप से काम कर रही है, उसमें चेतना का विकास नहीं है, लेकिन भक्ति के मार्ग में आने तक चेतना का विकास होता है। जब वो शुद्ध भक्ति में स्थिर हो जाता है उसके बाद उसका प्रगति होता है और अधिक आनंदमय अवस्था में, और अधिक अवस्था में, ये पांचवा है आनंदमय। तो इस तरह से चेतना का विकास फिर उत्तम वृंदावन की भक्ति का, इट्स बेस्ट। तो इस तरह से विकसित और आनंदमय अवस्था का और अच्छा तरीका है विप्रलंब विरह में भगवान की सेवा करना, दैट इज द बेस्ट। बट कहां से शुरू करते हैं हम, इसके बीच में सब आ जाते हैं, देवताओं की आ गया, देखो देवताओं के क्वालिटीज, देवता भी आ गए उसके अंदर, ये ऋषि वर्ण भी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गए। ये सब चेतना का विकास के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आते हैं। इतने परसेंट 47% देवताओं का, इस तरह से 52-54% शिव जी का, 52% 64% लाइक टोटली 96% इज फॉर ब्रह्मा आई थिंक, एंड देन 100% इज कृष्णा। तो इस तरह से चेतना का विकास होता है।
जैसे जो निम्न स्तर की चेतना वाले होते हैं उनके कौन से प्रयास से कार्य से या कैसे उनको चेतना उत्तर उत्तर बढ़ती है? तो मानव चेतना में तो संपर्क है, सत्संग है और भी बहुत सी तपस्याएं हैं, लेकिन जो लोअर चेतना वाले हैं, निम्न चेतना वाले हैं, वो तो अपने कर्मों का ही फल भोग रहे होते हैं।
हाँ।
उनका विकास कैसे?
उनका विकास उनको कर्मों का भुगतान करने से ही हो सकता है। जैसे समझ लो कि आपके पास दो गेट थे, एक गेट के अंदर एंट्री करने से आपको जो ये 10 मंजिल का जो बिल्डिंग है उसको आपको पैदल चढ़ के ही आना पड़ेगा, और एग्जिट भी नहीं है और एंट्री भी नहीं है, एक ही जगह है, और वो उन्होंने खुद चुन लिया कि अभी इस मार्ग से जाना है 84 लाखों में। तो अभी 84 लाख में जाएगा तो वो तब तक उनको सुविधा नहीं मिलेगा जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ जाते, तब तक उनको अभी वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। और उसके बीच में अगर किसी वैष्णव का पास फुल परमिशन होती है, किसी भी एनिमल को प्रसाद खिला दिया, हरिनाम सुना दिया, तो वहीं से उसकी लिफ्ट आ गई, तो वहीं से उसका ब्रिज निकल गया, तो बाद दूसरे बिल्डिंग में चला गया।
इसका मैं ये समझा हूँ कि जो ज्ञान की वजह से जो आत्मा ने शुरू में निर्णय लिया स्तर में जाने का, तो वहां से वो अगर उसे कोई मौका मिला तो ठीक है, तो क्रमिक विकास
yes.
होते होते और फिर जाके वो अंतिम स्तर पर
पहुंच सकता है। yes. उसको मनुष्य शरीर में
सांप सीढ़ी की तरह नीचे भी जा सकता
है। हाँ, वैसे सीधा 99 के ऊपर पहुंचेगा, वह भी सीधा 2 पर आ जाएगा। ये दिस इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर, यही होता रहता है। मायावादियों के साथ बिचारों का यही हाल होता है, 99 तक पहुंच जाते हैं और वापस इधर 2 पर आ जाते, क्योंकि उनके पास कोई ठोस आधार ही नहीं है ना भक्ति का। वो लोग विज्ञान में तक पहुंच सकते हैं, आनंद में तक नहीं जा पाते, इसलिए सब परेशान हो रही है। तो जिससे ये कवरिंग होती है वो एक एक करके हटती है चेतना की। फिर व्हेन वन कम्स टू प्राणमय, प्राणमय में क्या होता है कि वो अपने लाइफ सिम्टम को पहचान पाता है कि मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे जीवित रहना है, इसको बोलते हैं प्राण में। तो इसका क्या परिणाम आता है कि वो संघर्ष करता है अपने अस्तित्व करने के लिए। जैसे विशेष करके एनिमल, वो लोग क्या करते हैं कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो अधिकतर प्रभुपाद से अधिकतर मटेरियलिस्टिक ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन दिस, जो भौतिकवादी जो मानव समाज है वो इस पर आधारित है। जो लोग कैसे भी करके अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिनका जो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ही या इंद्रिय भोग के ऊपर, उसको बचाने के लिए, उसको करने के लिए वो लोग लगे पड़े रहते हैं। आहार निंद्रा भय मैत्र, आहार निंद्रा भय मैत्र, इसके इसको ही पकड़ के रखते हैं। तो दे आर लाइक मोस्टली ऑन प्राणमय स्टेज। एक लेक्चर में प्रभुपाद ऑल्सो सेड दिस थिंग, प्राणमय। इफ वन कैन कंटिन्यू हिज लाइफ विदाउट बीइंग अटैक और डिस्ट्रॉयड, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी हैप्पी। अगर कोई व्यक्ति आपको आक्रमण नहीं करता, कोई व्यक्ति कोई परिस्थिति आप पर आक्रमण नहीं करती और आपको विनाश नहीं करता, तो आप सोचते हो या फिर वो जीवात्मा सोचते हैं कि मैं खुश हूं। ये है प्राणमय अवस्था। आफ्टर दिस स्टेज इज कॉल्ड मेंटल प्लेटफॉर्म, ज्ञानमय, मनोमय, ज्ञानमय या मनोमय। इसमें क्या होता है कि वो लोग थोड़ा बहुत बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड सम व्हाट थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग के आधार पर। रामानुजाचार्य इसके ऊपर कुछ और कमेंट्री देते हैं। रामानुजाचार्य जो हमारे श्री संप्रदाय के हैं आचार्य, रामानुजाचार्य कहते हैं कि ज्ञान में केवल वही लोग प्रवेश कर पाते हैं उस क्षेत्र में जो आर्य संस्कृति को फॉलो करने वाले, जिसको आर्यन बोला जाता है। आर्य किसको बोला जाता है? जो वैदिक संस्कृति को फॉलो करता है उसको आर्य बोलते हैं। तो अर्थात जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन, उसको फॉलो करता है या धर्म के नियम का पालन कर रहा है, उस व्यक्ति को ही ज्ञान में बोला जा सकता है। रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं। बाकी सभी अन्नमय प्राणमय में पड़े रहते सब लोग, भौतिक वाली व्यक्ति। और उसके बाद होता है विज्ञानमय। कौन सा? क्या रामानुजाचार्य सही बता रहे हैं। दे आर टू ओपिनियन ओनली, नथिंग मच, जस्ट टू ओपिनियन। रामानुजाचार्य कहते हैं कि वही लोग आने चाहिए उसके अंदर। और ओवरऑल ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो सेम हो गया ना, बुद्धि का उपयोग का यही अर्थ होता है। आत्म तत्व को पहचानने में, अर्थात जिसमें थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग जिसको यूज करते हैं फॉर दैट। हाँ, क्योंकि वो तो बिल्ली भी, वही बिल्ली आपके कमरे में तभी आती है जब किचन में कोई नहीं होता है, तो वो भी तो बुद्धि का उपयोग तो करती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कई बार हम पूछते हैं कि मनुष्य पशु में क्या फर्क है, बोले बुद्धि। तो बुद्धि भी पागल, तो बिल्ली पागल थोड़ी है, ऐसे आ जाएगी, नहीं आएगी।
जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है
चूहा,
और दूसरा जो है वो इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है।
यस, तो वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है, वो संस्कृति को फॉलो कर रहा है, दैट इज ज्ञान।
वैदिक संस्कृति से ही आ सकता है, इसलिए
रामानुज ने कहा। यस, विज्ञान। अभी विज्ञान में वो शरीर और आत्मा के अंतर को समझता है, मैं ही शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो विज्ञान में अवस्था मानी जाती है। आत्मा के ज्ञान को समझना, दैट इज विज्ञान में। जो पहले जो थे तीन, वो वास्तव में देखा जाए तो अपने आप को क्षेत्र के साथ मानने वाले थे। वो क्षेत्रज्ञ है ऐसा वो खुद नहीं समझ पाते, आप समझे। किसान अपनी पहचान खेत से कर रहा है, किसान का अपना कोई पहचान ही नहीं है उसमें। मैं किसान, तुम कौन हो? तो मैं ये खेत हूं। अर्थात तुम कौन हो? मैं ये शरीर हूं। तो इसमें विज्ञान में वो समझता है कि मैं इस शरीर से अलग हूं। विज्ञान में स्टेज इटर्नल स्पिरिट, वो सूक्ष्म और स्थूल से अलग है। यस,
ये जानता है, एक्ट भी करता है,
एक्ट ऑल्सो। तो इस तरह से विज्ञान में ऐसा देन आता है आनंदमय। आनंदमय वो ब्लिसफुल अवस्था, वो भगवान की अवस्था है आनंदमय। You need paper pen? I'm sorry, I didn't ask you. Oh, okay. I'm sorry. Oh, you can have. You can just get one paper from the book. Hello, sir. तो आनंदमय अवस्था जो है वो भगवान की अवस्था है, आनंदमय अभ्यासात्, अर्थात भगवान पूर्ण आनंदमय है। जहां तक जीवात्मा बाकी की जो चार अवस्थाएं है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, तब तक वो भौतिक अवस्था मानी जाती है, वो आध्यात्मिक अवस्था नहीं मानी जाती। यद्यपि विज्ञानमय में आत्मा शरीर का अंतर वो समझता है, किंतु भगवान को नहीं समझता है वो, इसलिए उसकी नौका किनारे तक नहीं पहुंचती, वो समझ नहीं पाता, वो आनंदमय अवस्था तक नहीं पहुंचता। आनंदमय स्टेज इज एक्सप्लेन इन भगवद गीता एज ब्रह्म भूत स्टेज, अर्थात मुक्ति की अवस्था, मुक्त होने के बाद की अवस्था है भक्ति। सो दिस स्टेज बिगन्स विद इक्वली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज, सबके प्रति एक समान व्यवहार करते हैं, एंड इन विच वन ऑलवेज हैंकर टू रेंडर सर्विसेस टू कृष्ण। जो हैंकरिंग होती है वो भौतिकवादी को हैंकरिंग अलग होती है। हैंकरिंग का अर्थ क्या होता है? लालायित होना। तो भौतिकवादी जो होता है वो लालायित होता है इंद्रिय भोग के लिए, लेकिन भक्त जो होता है आनंदमय अवस्था में वो भगवान की सेवा करने के लिए लालायित होता है। सो दैट इज प्योरिफाइड। और मायावादी लोग आनंदमय का अर्थ करते हैं मर्ज हो जाना, उसको आनंदमय बोलते हैं मायावादी लोग। वो ऐसा मानते हैं कि जब ब्रह्म में आप विलीन हो जाते हो, हाँ ब्रह्मानंद ऐसा कहते हो। अज्ञानता का इसमें नहीं है, ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय और वो छठा होता है अज्ञानमय। Yeah, it's like that. So that's useless. I mean, that's mistaken. वो लोग करते हैं ऐसा गलती। So मत भक्ति में पते पड़ा। प्रभुपाद से जब तक कोई व्यक्ति आनंद में स्टेज तक नहीं पहुंचते, तब तक उसका जो सांस लेना है वो एक लोहार की बांध, लोहार क्या बोलते हैं, ब्लैकस्मिथ शॉप, ढो ढोकली की तरह, और उसके जीवन का जो अवधि है, उसका जो आयुष्य है, वो वृक्ष से ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर वृक्ष अगर 2-4 साल ज्यादा जी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? इधर इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। इज नो बेटर देन अ लोअर एनिमल लाइक कैमल हॉक्स एंड डॉग्स। जब तक वो आनंदमय तक नहीं पहुंचता, तब तक वो ऊंट कुत्ता सुअर उसके समान ही माना जाता है। यस, बिकॉज कृष्णा इज मिसिंग, भगवान मिसिंग है उधर, इसलिए उसका जो इतना सब पूरा मेहनत किया उसने, लेकिन उसके नीचे आधार ही नहीं है कोई, सब गिर जाएगा सब कुछ, भगवान नहीं उनके पास। तो आत्मशरीर का अंतर समझ लेने के पश्चात भी कुछ नहीं समझा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम कृष्ण बुक चैप्टर 86 में जो पढ़ रहा था अभी, ये जो डिस्क्रिप्शन है प्रभुपाद ने दिया है वो कृष्ण बुक में, ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखाई है। सो श्री प्रभुपाद राइट्स इन दिस पर्पट टू एंजॉय हिज ट्रांसेंडेंटल ब्लिस द सुपर सोल एक्सपांड्स इनटू विज्ञानमय प्राणमय ज्ञानमय and annamaya. In the field of activities, the living entity is considered to be the enjoyer and different from him in the anandamaya. That means there is a living entity decides to enjoy in dovetailing himself with the Anandmaya, then he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord as the Supreme Knower of the field. ये जीवात्मा जो है जब वो आनंदमय अवस्था में पूर्ण रूप से भगवान को संपूर्ण भाव से शरणागति करता है और उनकी सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है तो यही वास्तविक तब वो सिद्ध होता है और यही वास्तविक चित्र है जिसमें आप परम क्षेत्रज्ञ अर्थात भगवान उनको आप समझ सकते हो और सबॉर्डिनेट क्षेत्रज्ञ सबॉर्डिनेट को क्या बोलते हैं अधीन अधीन क्षेत्र में दो है जीवात्मा दो क्षेत्र में हुए ना भगवान और जीवात्मा लेकिन दोनों के बीच का अंतर क्या है एक
खुद को नहीं जानता और दूसरा
सबको जानता है और जो जो खुद को नहीं जानता वो तभी संपूर्ण हो सकता है जब वो परम क्षेत्र में को जानेगा तभी वो बाकी सब कुछ समझ पाएगा इसको दिस इज द सिस्टम
भगवान को जान लिया तो फिर सब
तो सब समझ पाएगा नहीं जो नहीं समझ पाएगा किसी चीज को
विज्ञान में सर भक्ति नहीं आ रहा
उसमें भक्ति नहीं है ओनली आनंद में उसमें
कहते रहते हैं डॉक्टर शर्मा ने कि जो आत्म साक्षात्कार है वो विज्ञान में स्थिति में आता है या आनंद में स्थिति में आता है आत्म साक्षात्कार
आत्म साक्षात्कार में भी तीन कैटेगरी आती है ब्रह्म परमात्मा भगवान लेकिन केवल भगवान साक्षात्कार ही आनंद में आता है
जैसे मैं आत्मा ये तो हमने मान लिया जैसे परंपरा से गुरुजनों से जो सुना उसको हमने मान लिया कि मैं आत्मा नहीं चाहिए बट इसका एक अनुभव अंदर से जिसको कि ज्यादातर अधिक लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि भाई हमारी आत्मा और शरीर अलग अलग हैं इसको अंदर से अनुभव करना वो स्थिति इसमें कहाँ पर
विज्ञान में लेकिन भगवान श्री प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार को अभी हमने जो बात किया आत्म साक्षात्कार वो इनसफिशियंट है वो एक ही पहलू है आत्म साक्षात्कार का लेकिन आत्म साक्षात्कार का जो संपूर्ण जो डेफिनेशन है वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में पहचानना दैट इज रियल आत्म साक्षात्कार
प्रथम स्थिति पूंजी ये हो कि सबसे पहले इस बात पर दृढ़ हो जाए कि
शरीर नहीं है वो विज्ञान अवस्था है
और फिर उस वो आत्मा उनका इटर्नल सर्वेंट
फिर वो आनंदमय अवस्था तो वो जो सूक्ष्म आत्म साक्षात्कार या पार्शियल आत्म साक्षात्कार वो विज्ञान अवस्था में आता है हाँ ऑब्वियस ये साधन भक्ति का वही तो रीजन है हम जो साधन भक्ति करते हैं सोलह माला जप करना मंगला आरती करना शास्त्र को पढ़ना ये सब ये साधन भक्ति के माध्यम से हमारी चेतना विकसित होती है और वो आनंद में तक पहुंचते हैं यस
वो क्रमिक जैसे आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि वैष्णव की कृपा से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए जैसे कोई एजेड कोई एल्डरली पीपल है वृद्ध है जिनको इतना इंटेलेक्चुअल है जो विज्ञान में अवस्था में मतलब उनके लिए डिफिकल्ट है इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड तत्व के सदग्रहण को समझना मगर वो बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं वो चैंटिंग कर रहे हैं तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो विज्ञान में अवस्था उनको उतना शायद उनको पता हो भी ना भी बताओ आत्मा और शरीर के बारे में इतना विवरण से ज्ञान मगर वो ऑलरेडी आनंद अवस्था में है क्योंकि जैसे वृंदावन वासी है फॉर एग्जाम्पल या कोई और तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये चार अवस्था उनके लिए नहीं है सिर्फ डायरेक्ट आनंद अवस्था में
यस बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा से आज कोई भी व्यक्ति चाहे बाकी के चार स्टेजेस से वो नहीं हुआ लेकिन उनके लिए सहज बना दिया कृष्ण भक्ति को तो आनंद में अवस्था में पहुंच गया सीधा और जनरली अधिकतर केस में वो जैसे वो सिद्धांतिक रूप से जैसे हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भक्तों की कृपा से शॉर्टकट मिल जाता है तो सीधा आनंद में पहुंच जाएगा भक्तों की कृपा से तो यही सिचुएशन आज है कि प्रभुपाद एज ए डिवोटी उनकी कृपा से भक्त सीधे आनंद में पहुंच गए चाहे वो वृद्ध हो बालक हो कोई भी हो लग जाए सो सैद्धांतिक दृष्टि से सेम कृष्णा एंड हिज डिवोटीज दे हैव फुल फैसिलिटी फुल लिबर्टी जो चाहे कर सकते
हैं
चेतना में पहले से ही होता है विशेष करके योगा लेटर में जो फर्स्ट रंग है, ये पहला जो स्टेप है कर्म योग या ज्ञान, तो वो आपके इससे शुरू हो जाएगा प्राणमय के आगर आगर से।
पहला तीसरा ये है कि अपने को
सुरक्षित रखना और आहार इंद्रा भय मैथुन के ऊपर अपना अपने आप को केंद्रित करता है, तो वहीं से शुरू हो जाता है योगा लेटर। सो ओके, सो हम एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, देन वी कम बैक टू अवर श्लोका। ओनली 20 क्वालिटीज, नॉट मच। उसके बाजू में एक कॉलम बना देना, आपके जो डिस्ट होते हैं ना उसके बाजू में एक ब्लैंक कॉलम बना देना। हाँ टेबल, forget 20, it's only 20. So Srila Prabhupada कहते हैं अमानित्वम अदम्बित्वम। अमानित्वम का अर्थ होता है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा है ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त्येव। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को बहुत बल देते थे, अपने ज्ञान से अहंकार नहीं करते कोई भी जो भक्त होते। अमानित्वम चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल गिफ्ट दिया है हमें, सब कुछ व्यवस्थित रूप से इसको प्रस्तुत किया गया चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, और हमने हरिनाम का ये महामंत्र का ये सिस्टम भी दिया है, सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है भगवान की कृपा से। लेकिन ये अमानित्वम का अर्थ होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये भी अमानित्वम है। मैं शरीर नहीं हूं, अहंकार हमारे शरीर का होता है, तो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, लाइक दैट। तो ये अहंकार शरीर के कारण होता है। सो चैतन्य महाप्रभु कहे कि आई एम नॉट मैटर विल बी वेरी इजीली रिलीव्ड इफ यू चैंट हरे कृष्ण। हमारे तुम कार से ही होता है, अर्थात भक्तों के लिए अगर देखा जाए तो तृणादीपिका सिद्धांत फॉलो करना है। तृणादीपिका सिद्धांत क्या है कि अपने आप को तुच्छ मानो, आप कुछ भी, आप कितने भी अच्छे हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट डिफरेंस। आप बहुत सारे गुण है, आप बहुत अच्छे हो, सो व्हाट। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद जी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। तो कितना भी अच्छा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीनता का अर्थ होता है, विनम्रता का अर्थ यही होता है कि अपने आप को सबसे तुच्छ मानो। आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित व्यक्ति का सबसे पहला गुण यही होता है कि वो भक्त अपने आप को विनम्र मानता है, वो विनम्र प्रस्तुत करता है। तो वो उसका गुण, जितना ज्यादा विनम्र हो आप उतना अधिक आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये नकली वाली विनम्रता नहीं, सामने आते तभी विनम्र होता है ऐसा नहीं। अपने अकेला बैठा है फिर भी अपने आप को तुच्छ ही मानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मुझे भगवान ने कृपा करके बच्चा के रखा है, मैं भी सहन कर ले। वैष्णव भी सहन करते, भगवान भी सहन कर, सब लोग मुझे सहन कर रहे हैं, इस तरह से सोचना अपने आपको, दैट इज ह्यूमिलिटी। फिर यस वो आएगा अभी आफ्टर फिनिशिंग, यस कुछ लिखना नहीं, जस्ट नंबर लिखना है, दैट्स इट।
यस लिखना तो कहीं और लिखे ना?
नहीं नहीं, हाँ वो सब उधर लिखो साइड में, एक जगह छोड़ दो उसके सामने का,
यस
तो वो आप साइड में छोड़ देना, उसके लिए उसके सामने तो आपको नंबर लिखना है, टेक्स्ट नंबर वो लिखना होगा, अभी नहीं। सो अदम्बित्वम, अदम्बित्वम मीन्स अगेन प्रभुपाद सेड कि अपने आप को बड़ा महान समझना, अमाने तुम अदम्बित्वम, मैं मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये अदम्बित्व। दम्ब का अर्थ ये भी होता है कि ड्यूअल डीलिंग, ड्यूअल डीलिंग में आप मेरे सामने कुछ और है, दूसरों के सामने कुछ और है, तो ये दम्ब वाला सिचुएशन। भक्त जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, उसमें आपको मन को शांति प्राप्त होगी, डबल डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करने की प्रॉब्लम झंझट खत्म हो जाएगी, किसी के सामने ये, उसके सामने वो, इसके सामने वो, इसके सामने वो, जो है आप अंदर हो आप वही रहो, फिर आप कहेंगे प्रभु मैं अंदर से ही डबल हूं तो ऐसा नहीं होता है, आपके हृदय में जो है वही आप बाहर रहो। यस
जहाँ तक अपने मतलब स्कूल है या कोई भी मंदिर है, तो आपने खास इसको निर्भर कर, तो यहाँ अध्यात्म को आता होता है भक्त भी मतलब ये सब ज्ञान लिए हुए होते तो बहुत इजी हो जाता है डीलिंग, बहुत इजी होता है, मतलब कि शांत रहते हैं, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं जैसे जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, तो उसमें जो लोग होते ज्यादातर इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, 95% लोग ऐसे ही होते हैं, तो उनके साथ डीलिंग
मिनिमम मुश्किल, मिनिमम जितना आवश्यक उतना है, उससे अधिक नहीं,
लेकिन उसमें प्रभु जी
20 में से एक है।
उसमें क्या होता है कि दूसरे को ऐसा लगता है कि आपके लाख कराया जाता है, टीम
बड़ी सी स्माइल दे देनी चाहिए, बड़ी वाली एक स्माइल दे देने की उसको, दैट्स इट। हम उनके साथ उनके जो शौक है, उनके जो इंटरेस्ट है, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भी हम आपके शौक में कहाँ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो वो तो आपको तो ऐसा कभी लगा नहीं कि वो ये सब तो अकेले अकेले ही रहते हैं, ये भी
प्रॉब्लम है सर जी कि हम लोग अपने हम अपने में खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को ऐसा लग रहा है, हमको कहते हैं कि आप अकेले रहते हो, रवि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कृष्ण है।
आप बोलो, मुझे भी बिल्कुल यही फीलिंग आ रही थी, आप लोग भी अकेले अकेले रहते उनसे उतना ही व्यवहार रखना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रभुपाद कहते हैं त्रिनादपी का अर्थ होता है लाभ पूजा प्रतिष्ठा से अपने आप को बचा कर रखना, ये भक्ति की विधि को और भक्ति की लता को हटाने वाले हैं ये लोग। लाभ पूजा प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि थोड़ा कोई पूजा दिया आपको, मान सम्मान दे दिया आपको, प्रणाम कर दिया आपको, कुछ एनवेलप के अंदर कुछ सूखा प्रसाद दे दिया, कुछ दान दक्षिणा दे दी, अब प्रतिष्ठा दे दी, कुछ फैसिलिटी दे लो प्रभु जी, ये तो ये सब उपशाखा गण है। सोते तो उठा लेना,
तो
प्रणाम रूम नंबर 1
भोजन
भोजन
लिया ना,
दैट्स फाइन, रूम नंबर 1 में से बॉटल ले लो।
ऐसे में कथा सुना रहे थे, तो एक काफी अच्छी कथा सुना रहे थे, कहते थे कि दम्ब जो है वो पाखंड, ये दोनों साथ साथ जुड़े जुड़े चलते हैं, कहते हैं उसमें ऐसा होता है कि अंदर से तो मच्छर है वो, लेकिन हाथी कितना अपने को दिखाना चाहता है,
ऐसा ही होता है,
कहते हैं ये दम्ब है। और उन्होंने ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया कि एक बार जो है दम्ब पाखंड बना के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के आसन छोड़ के उसके बिठाने के लिए तैयार हो गए।
सही बात,
कितना प्रोजेक्ट कर सकता है इसका इमेजिनेशन नहीं है, गंभीर अपने को क्या प्रोजेक्ट कर सकता है, कल को हो सकता है भगवान जी अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
सही बात,
तो ये कहते हैं दम्भ और पाखंड दोनों जैसे साथ साथ चलने वाले दो एक ही हैं एक्चुअली।
यस, तो इसलिए दम्भ और पाखंड ये दोनों, इसलिए प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं कि इसका ये आउटकम ये ऐसा आ सकता है कि वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा में फंस जाएगा। अर्थात क्या होगा कि वो आपको प्रवचन दे रहा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है, वो आपको आध्यात्मिक उपदेश कर रहा है, सेवा आपका, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और है। वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहता है, वो आपसे मान चाहता है, आपसे कुछ डोनेशन चाहता है। ये सारी अवस्था के कारण अगर वो भक्त करता है तो वो उसके लिए उपशाखा बन जाता है, उसकी भक्ति वहां पर रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। समझे ना, इंटेंशन मैटर्स, कि आपका इंटेंशन क्या है। और लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसलिए भक्त लोग भागते हैं, सदूर भक्त कोई देखता है वो प्रणाम कर रहे हैं तो भागो इधर से। फिर है अकिंचन गोचर। अकिंचन गोचर के विषय में वही सेम चीज प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त जो होता है वो विनम्र होता है और विद्वान होता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी का भी हस्तिनी सुनिच पंडिता समझते हैं। अकिंचन का अर्थ होता है प्राइडलेसनेस, अहंकार मुक्त। तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले शरणागत होने के लिए, अगर आपको शरणागत होना है तो सबसे पहले विनम्र होना चाहिए। अर्थात जो लोग विनम्र है उनके द्वारा ही भगवान प्राप्त हो सकता, और किसी के द्वारा नहीं। फिर आचार्य उपासनम, आचार्य उपासनम का प्रपद कहते परिप्रश्न से हो, या शरणागति नहीं होते तो आप कुछ सीख नहीं पाते। ओ वाई शुड आई सरेंडर, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, आई एम यू नो इंडियन से आई नो कृष्णा, ऐसा होता है। आपको विदेश में तो ऐसा होता होगा राइट, आपको तो इंडियन कम मिलता है। अमेरिका में मुझे बहुत लोग मिलते थे, अमेरिका में कोई कोई भी गुजराती मिला, कोई इंडियन मिला, आई नो कृष्ण, सो व्हाट बट आई नो कृष्ण। प्रभुपाद जिसको यूज कर रहे हैं आई नो कृष्ण, पफ्ड अप अननेसेसरीली, वो लोग अभिमानी है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। कृष्ण से इज मटेरियल डिसीज इज रजस्तमो भावा। इसलिए आचार्य उपासनम, आचार्य उपास आचार्य का व्याख्या प्रभुपाद बताए तीन। एक है कि जो वैदिक शास्त्रों के सभी उद्देश्य को जानता है, पर्पस, सारे पर्पस को जानता है। दूसरा क्वालिटी है उसका, वो अपने अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाता है। एंड तीसरा है जिसने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, इसको आचार्य बोलते हैं। Excuse me. You want me to repeat? One who knows the purpose of Vedic literature, जो वैदिक शास्त्रों का अर्थ समझता है, जो अपने शिष्य को अपने उदाहरण से अभ्यास से सिखाता है, और तीसरा कि जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया है। आचार्य सेल्फ मेड नहीं होता है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता है, जो परंपरा से आता है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। प्रॉपर से जिसे प्रॉपर ने एग्जाम्पल दिया, इफ आई परचेज ए मेडिकल बुक, प्रॉपर गिव एग्जाम्पल, स्टडी एट होम, मैं पढ़ना शुरू करूं, प्रैक्टिस करना शुरू करूं, सो यू विल बी कॉल्ड अ क्वैक, आपको लोग क्वैक समझेंगे, मूर्ख धूर्त मानेंगे लोग। आप सरकार के द्वारा आपको डॉक्टर का डिग्री नहीं मिलेगा तब तक आपको डॉक्टर कोई नहीं मानेगा। अब बोले नहीं, मैं तो सब पढ़ रहा हूँ, शास्त्र वास्त्र सब पढ़ा है, मेडिकल बुक पता है मुझे, यही मेडिसिन आती है इसके लिए, फिर भी लोग आपको डॉक्टर नहीं मानेंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू परंपरा। फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्य का अर्थ होता है कि जैसे आंख है, वैराग्य का हमें पालन करना है, तो आंख है तो वो आंखों को क्या कि सुंदरता देखने का अच्छा लगता है, उसको सुंदरता देखनी होती है आंखों को। तो सुंदरता के लिए अगर आप राधा कृष्ण के विग्रह को देखते हो तो आपको उससे अधिक और सुंदर चीज मिलेगी नहीं, तो उनको देखने से ये सुंदरता हमें ये आंखों का शमन हो सकता है। जनरली फॉरगेट सीइंग एनी अदर ड्रीम, ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रैंडमली प्रॉपर्ली है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्थात ये हमारा रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इफ यू आर साइंटिफिकली एडवांस कि इसको कैसे रोका जाए, देन ओनली योर एडवांसमेंट इज हैविंग सम वैल्यू, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ साइंस। इफ यू हैव मैन्युफैक्चर्ड अ वेरी गुड कार, अगर आपने बहुत अच्छी गाड़ी मैन्युफैक्चर किया और उसका आपको यू नो टेस्ला और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है ना विदेश में, तो BMW और ऐसे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर आपने, दैट इज नॉट एडवांसमेंट, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बड़ी गाड़ी खरीदने से आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? ये आपका हाई टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन हुआ ना, क्या हुआ? आप कंफर्टेबली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो, इज इट नॉट द सॉल्यूशन? बट देन इज दैट द रियल प्रॉब्लम? क्या वो वास्तव में आपका सही समस्या थी? नहीं, तो सही समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आपकी सही समस्या। सो शास्त्र से नोबडी शुड बिकम अ गुरु, नोबडी शुड बिकम अ फादर, नोबडी शुड बिकम अ हस्बैंड, जब तक आप उनको सही समस्या से उसका हेल्प नहीं करते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बाकी ये गाड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, इससे क्या होता है? डजंट मेक अ बिग सेंस। असक्तिर अनभिस्वंग, ज्ञान मिस असक्ति। सो प्रभुपाद कहते हैं नेचुरली मनुष्य अपनी पत्नी परिवार घर से असक्त होता है, लेकिन 50 साल के बाद उसको पंच शर्द्वम वनम ब्रजे, 50 हो जाए उसके बाद फिर वन में चले जाना चाहिए, फिर उसको फिर ज्यादा इधर घिसना नहीं चाहिए अपने आपको। मटेरियल वर्ल्ड में ये मुश्किल लगता है दिखने में सुनने में, लेकिन 50 हो गया, बेटे बेटे की शादी उस समय हो जानी चाहिए, बेटे बेटे की शादी करवा दो, फिर वन के और प्रस्थान करो। वन के और प्रस्थान करो मीन्स फिर छोड़ो ये समाज में, आजकल तो सिस्टम अलग है, आजकल तो क्या है, बेटे बेटे की शादी, फिर उनके बेटे बेटे की शादी करवा, उनको हेल्प करो, उसके लिए यहाँ से अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, किसके लिए जा रहे हो? बच्चा बेचारा क्या, दो लोग कमाएंगे तो बच्चा कौन समझेगा? इसके लिए तुम हो, तुम कहो अरे भाई हम लोग, हमारा बेटा है, हमें तो हम ही करो, यही करते रहो फिर पूरा लाइफ टाइम। यस, वन टू 50 ईयर्स के बाद वनम वनम गच्छे, वन में याद है, वन में नहीं। यस,
कहते थे कि पूरी लाइफ है वो 50,000 लाख रुपए के लिए जॉब जो करता है, पर रिटायरमेंट के बाद भी वही काम 5,000 रुपए के लिए करता है।
हाँ, वही काम 5,000 रुपए, ऐसा ऐसा समस्या होता है। अभी उसके लिए एक व्यक्ति, एक डिवोटी आए थे मेरे पास, वो 50 क्रॉस कर चुके थे, तो मेरे पास आए थे, बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल। तो उस समय मुझे पूछे जस्ट लाइक, वो भक्त जनरली मुझसे बात नहीं करते, जनरली बात नहीं करते, दूर से हरे कृष्ण होता है, तो हम भी उनको दूर से हरे कृष्ण बोलते। तो फिर वो एक बार हमें मिलने आए थे, क्योंकि उनको बताया गया था टेम्पल की ओर से कि दीक्षा लेना होगा तो आपको इनका इंटरव्यू देना पड़ेगा इनके साथ। तो वो आए थे मेरे पास, तो फिर बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन बाद में उन्होंने सामने से पूछा, अभी आए कहे तो थोड़ा फ्री में एडवाइस तो देना ही चाहिए, तो फिर पूछा कि आप मेरे लिए क्या एडवाइस करते हो? तो मैंने, आपका उम्र क्या है? तो बताया कुछ 50 के ऊपर कुछ था। तो मैंने उनको कहा कि आप ब्रजमंडल करो, ये करो, परिक्रमा करो, सब बहुत सारी चीज बताई, ये सब करो, बोले बिजनेस बच्चों को देगा। और फॉर्चुनेटली उन्होंने इस बात को, पता नहीं मेरे कहने से या किसी कारण से, सीरियसली लिया। अभी कुछ समय पहले मुझे मिले थे, बोले उस समय आपने बोला था कि वन में जाओ, अर्थात वनम गच्छे, वनम जाने के लिए, वन व्हेन देन इज फीलिंग सो गुड, बोले कहां फंसा पड़ा था उसके अंदर अर्निंग मनी में, और अभी इसके अंदर फंसा पड़ा है, आई मीन इसके अंदर मैं खुश हो गया। सो कहने का तात्पर्य है कि भक्त लोग को भी ऐसा होता है कई बार कि हम लोग 50 साल के बाद भी लगे रहेंगे उसी कार्य में, लेकिन भक्तों को धीरे 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 छोड़ जाएंगे, हो सकता है अचानक नहीं छूटेगा, धीरे 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 इसको छोड़ देना चाहिए। फिर आप करो यात्राएं करो, प्रचार के सेवाएं करो, टेम्पल में 1000 सेवा होती है, टेम्पल में कुछ सेवा दो, लाइक दैट। डोंट गो फॉर मनी देन, अर्थ के लिए काम मत करो, फिर धन कमाने के लिए छोड़ दो, वो तुम्हारा गया, अर्थ का काम मत करो, अभी केवल सेवा करो, लाइक दैट, यू नो। देन मई चनन्य योगेन, मई च अनन्य योगेन भक्तिर भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज द अनन्य, विदाउट अव्यभिचारिणी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। डिवोशनल सर्विस इज नॉट सेंटिमेंट। सो भगवान ने अव्यभिचारिणी के लिए वो भी बताया, प्रभुपाद कहते सततम कीर्तयन्तु माम, इट इज सेम एज अव्यभिचारिणी। 24 घंटा कृष्ण का चिंतन करो, अनन्य योग, उसको विविक्त देश सवित्वम अरति जन समसरी। तो पब्लिक में केवल उतना ही व्यवहार करो जितना आवश्यक है, आप उनको अपना संग दे सकते हो भक्त बनाने के लिए, ना कि आप उनका संग ले रहे हो ये सोचता कि कई बार होता है ऐसा। एक डिवोटी, उसको मैंने बताया था कि तुम यहाँ इन लोग को प्रीच करो, कुछ दिन के बाद शायद कंप्लेन लेके आया, समस्या है, क्या प्रॉब्लम? बोले प्रवीण मेरे मन में ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है। अरे मैंने कहा आपको प्रीचिंग करने का बोला गया था, उनके द्वारा प्रीच होने का नहीं बोला गया था। डोंट गेट प्रीच बाय देम, वो व्यक्ति आपको प्रीच कर रहे हैं कि आप उनको प्रीच कर रहे हो। तो इसलिए प्रचार का अर्थ यही होता है कि आप उनको अपना संग दो, आदर उनका संग मत लो, उनका प्रभाव आप पे नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर आप, यू नो। इफ यू बिकम विक्टिमाइज बाय देयर एसोसिएशन यू आर डूम्ड, यू शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर एसोसिएशन। आप जो जानते हो उनको बताओ, कृष्ण भावनामत क्या है वो बताओ, जा देखो तारे का कृष्ण हो, फिर वहां पर जाकर उनकी सुनने मत बैठ जाओ कि वो क्या कह रहा है, चलो उसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत सटल है, ये सूक्ष्म चीज है, कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं उसके तत्व ज्ञान से। सो डोंट गेट इनटू दैट, भक्तों का उतना ही संकल्प। फिर वो भक्त को फिर उस समय मुझे बोलना पड़ा कि आप अभी एक महीने का ब्रेक ले लो प्रीचिंग में से, अब जो प्रीचिंग व्रीचिंग कुछ नहीं, एक महीने का ब्रेक, अभी इन भक्तों का संग करो, मीन्स अभी उनको किसी और को संग लेने जाना भी पड़ेगा। तो मैंने उनको फिर का सजेशन दिया कि आप किसी और का संग लेने जाओ, अभी वो एक महीने तक उनका संग लो, उसके बाद फिर प्रीचिंग का सोचेंगे। सो वी हैव टू डू दैट वे, नहीं तो फिर क्या होगा, हम भक्ति में से गिर जाएंगे।
आपने बताया,
उससे इंटरेक्शन कम कर देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, ये समझ लो कि कुछ लोग का वो इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है बोलने में या किसी भी तरह से, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क ही लग रहा है, बंद कर देने का, नो कम्युनिकेशन। इट हैपन्स, ऐसे 1000 एग्जांपल है मेरे पास कि ऐसा होता है भक्तों के साथ भी, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा कई बार आप किसी से प्रीच करते तो फिर आपको ऐसा लगता है, हालांकि आप उसका प्रभाव में नहीं आते, लेकिन आपको सिग्नल पता पड़ जाता है कि इसके साथ बात करने में समस्या होने वाली आगे जाकर के, खत्म, स्टॉप है, तब तो उसको स्टॉप कर देते। एक व्यक्ति ने मेरा नंबर ले लिया था, कॉलेज में प्रीचिंग करने जाता था। तो वो कॉलेज में तो क्या होता है, सब होते बॉयज गर्ल्स सब होते। तो एक लड़की के पास मेरा नंबर आया था, एंड सी टेक्स्टेड मी। तो पहले तो टेक्स्ट किया, तो ठीक है भाई कोई पूछ रही है, आंसर दो, खत्म। थोड़ी देर के बाद दूसरा मैसेज आ गया, तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आई अंडरस्टूड कि इसके साथ बात करने में अभी रिस्की है, बेटर नॉट टू गो इनटू इट, सो लाइक दिस। तो इस तरह से आपको कहीं पर, इसमें तो हम उनके प्रभाव में नहीं आने वाले, लेकिन ये हमारे लिए माया का काम कर सकता है। और कोई व्यक्ति, कोई और ये माया होती है, कोई दूसरी कोई माया आ जाती है, कोई दूसरा कोई तरीका लेकर आ जाता है, कोई बताता है कि ये शंकराचार्य की फिलोसफी बताने लगता है, कोई आता है तो वो एस्ट्रोलॉजी सिखाने लगता है आपको, तो क्या करना है, टाइम पास थोड़ी करने गए इसके साथ। सो लाइक दैट
मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हम एक प्रोग्राम किया थे यहाँ मंदिर में, जिसके वजह से उसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रोग्राम थे उसमें कोई पहचान के भजन के कोई आए थे, वो किसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग थे, वहां पे वो सन्यासी थे उसमें, तो उन्होंने एक प्रोग्राम में आया, उन्होंने बताया नहीं, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे बोला नाम बताया, उन्होंने अपना सन्यासी हुआ नाम बताया था, फिर मैंने प्रभु से डिस्कस किया था तो उन्होंने बताया फिर आपके ऐसे, ये उनको पता था कि ये तरह के लोग, इनका ये मानसिकता होता है, लेकिन उन्होंने बोला फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और फिर कम्युनिकेशन वहीं से बंद कर दिया। तो वो अच्छा लोग,
तो वो अगर वो कम्युनिकेशन बंद नहीं करते तो या तो हमें परेशान करते या फिर किसी और भक्त को परेशान करते, बेटर कि आप जहाँ हो आपको नमस्कार, भागो यहाँ से।
गांधीनगर में रहते हैं,
12-13 साल
2006 से प्रभु जी वो हमें मतलब विश्व रूप दर्शन और ये विराट रूप दर्शन सब करवाने के लिए पीछे पड़े हैं, कहते हैं आप आ जाओ दो घंटे के लिए आ जाओ, हम आपको ये बता देंगे वो सिखा देंगे, तो जब कभी आएंगे फिर अभी लास्ट में धमकी देंगे मैं आपके घर आऊंगा एक दिन, तो मैंने कहा भाई क्षमा करना मेरे घर मत आना, कहते कोयला हूँ ऐसे रहूंगा कोई फर्क ना पड़ने वाला इस पे, तब जाके उन्हें मैंने स्पष्ट शब्दों में लास्ट में ही मैंने कह दिया, मैंने कहा आप अपनी पद्धति अपने हिसाब से समझो, हम तो सिर्फ नाम लेते हैं, इसके सिवाय हमें कुछ न करना है न सुनना है, तब जाके वो शांत हुए। तो फिर मैंने सचिन प्रभु जी से कहा, मैंने कहा किसे कहते नहीं वो फ्रॉड है तो दूर रहना,
क्योंकि उस व्यक्ति के साथ डिस्कस करने में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, हम तो कई बार डिवोर्स को भी बताते हैं, एक डिवोर्स को दूसरे डिवोर्स के साथ बात करने को मना करते हैं, बोले प्रभु जी ऐसा कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी ही है और वो भक्त जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है और उसके तत्व ज्ञान में कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, डोंट एसोसिएट।
तो मैंने उनसे मैंने कहा देखो आप तो एक फुट सुना जाते हो फुट ऊंचा उठ जाते हो तो हमें ऊपर उठने की इच्छा है नहीं, होते यही ठीक है।
सो लाइक दिस हम नहीं कर रहे, फिर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अर्थ होता है कि अगर आपके पास थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो वो हमेशा रहेगा, नित्यत्व वो नष्ट नहीं होगा, स्वरूपम से धर्मस्य। फिर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप फिलोसोफर हो तो आप तत्व ज्ञान को समझो, ये कृष्ण भावना उनको, और तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये तत्व है, इसको हमें समझना है। सो अगर आपको एमए पीएचडी करना है ये डिग्री का क्या महिमा, एतज ज्ञानम अर्थात ये सब ज्ञान है, नॉट दिस डिग्रीज एमए पीएचडी, सॉरी अगर आप में से कोई भी है तो, दीज आर ऑल डेकोरेटिव्स डेकोरेशंस ऑफ द डेड बॉडी, हमारी जितनी भी डिग्रियां है उसको प्रभुपाद कहते हैं कि ये मृतक शरीर का श्रृंगार है न, उसके आपको लगे कि एक और डिग्री लेता हूं कोई बात नहीं, डेड बॉडी के ऊपर एक और एक फूल लगा दो तो इसका क्या हैज नो वैल्यू, सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड तत्व, आपको नहीं आता, तो ये सब ज्ञान है अन्यथा सब कुछ अज्ञान, सो देयर इज अज्ञान। नाउ आपके सामने चार था ना, क्या तत्व ज्ञानार्थ, हाँ प्रभुपाद इसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं डिवोशनल वे में, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सेड दैट। ओके सो हम आपको 3 मिनट का टाइम देते हैं, अभी आपको क्या करना है टेल यू, वी कैन गो फर्दर, टेक्स्ट नंबर 13, अभी ये जो सेट है 13 से 19 का वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ज्ञान का विषय, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञेय बोलते हैं, है ना, ज्ञेय, ज्ञेय के विषय में बताया गया, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। यू कैन गो अहेड फर्दर, पढ़िए।
अब मैं तुम्हें देह के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है।
यस, यहाँ पर श्री प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि Lord has explained the field of activity and the knower of the field. He has also explained the process of knowing the knower of the field of activities. Now he begins to explain the knowable, first the soul and then super soul. This is important. First the soul, then the super soul. So, Atma or Paramatma, ye dono alag alag janne wale hain. By knowledge of the knower. So, here also in Prabhupada, one of the lecture he said, ki anyone who comes to the ultimate goal of knowledge becomes immortal. अच्छा, इसको जानने के बाद आपको अमृत अत्वार कल्पते। The word used here is मत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे वो, अर्थात मुझे प्राप्त करेंगे इसको जानने के बाद। सो प्रॉपर इज गिविंग द रेफरेंस फ्रॉम भगवद गीता ऑल्सो, यम हि न व्यथयन्ते ते सो अमृतत्वाय कल्पते। सो लाइक दिस, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात परम ब्रह्म को जानने से, भगवान को जानने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सो ये दोनों ही जीवात्मा जो है वो पर है ये भौतिक प्रकृति से। देन नाउ लेट्स गो फॉर टेक्स्ट नंबर 14।
उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त और व्याप्त होकर अवस्थित।
ओके, देखो प्रभुपाद बताते हैं कि 14 से 18 जो श्लोका है उसमें ज्ञेय के रूप में परमात्मा का वर्णन आता है। प्रभुपाद से द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मन मेंशन इन दिस वर्स इज इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल सोल, जो 13वें में था ना वो, दैट इज इंडिविजुअल सोल। व्हेन द वर्ड ब्रह्मन इज अप्लाइड टू द लिविंग एंटिटी, it is to be understood that he is the Vignan Brahma as opposed to the Ananda Brahma. Number 4 or number 5, Vignanmay or Anandmay tha. So Vignan Brahma means Atma wala sakshatkar, Atma ko samajhna, aur Ananda Brahma ka arth hota hai Paramatma. Ye dono alag alag hai. This is just a simple terminology, ise pareshan hone ki avashyakta nahi ki ye kahan se aa gaya naya विज्ञान ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। प्रपद उसको यूज कर रहे हैं, विज्ञानमय जो था ना, पांच अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय आनंद, उसके रिलेशन में प्रपद बताए विज्ञान ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। सो दिस टर्म्स आनंद एंड विज्ञान रिफर्स टू डिस्कशन इन टेक्स्ट नंबर 5 जो हमने बताया था उसके विषय। अभी प्रपद यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वास्तव में अगर आप उपनिषदों का हेल्प लोगे तो ये इम्पर्सनल ब्रह्म बार बार आप उसके ऊपर चले जाओगे। परमात्मा के विषय में यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर जब भी बात हुई सब परमात्मा की बात हुई, ब्रह्म की बात हुई या आत्मा की बात हुई, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में सब जगह इसको परमात्मा के रूप में घोषित करते हैं कि 14 से 18 में जिसकी जिस ज्ञेय की बात हुई है जहां पर भी, वो आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है। दिस इज द प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्रभुपाद। प्रभुपाद की हेल्प नहीं तो आप गलती कर बैठते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर अभी परमात्मा ना हो, सर्वत्र प्राणी पाद अंत, उनके सब जगह उनके हाथ है, सब जगह पांव है, सब जगह आंखें है, मस्तक है, चेहरे सब कुछ है, कान है। तो इस तरह से परमात्मा सब जगह विद्यमान है, एवरीवेयर। प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि ये आत्मा के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, वेरी स्ट्रांगली से। अगर कोई व्यक्ति, श्रीमद् भागवत में प्रपट में प्रपट में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति आत्मा को इसके अंदर फिट करना चाहता है, ये श्लोक में, ये श्लोक तो समझे ना आप, सब जगह हाथ है पांव है, सब जगह, कोई व्यक्ति आत्मा को इसके अंदर फिट करना चाहता है तो वो भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि भगवान के हाथ पांव इत्यादि के रूप में, अंश के रूप में जीवात्मा भगवान को असिस्ट करने का काम कर रहे हैं इस तरह से, बट नॉट दैट परमात्मा और आत्मा एक है इस तरह से। सो एक जगह प्रभुपाद लेक्चर में पता है, वेरी क्रूड डिस्कशन, प्रभुपाद से भक्ति मीन्स टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम द फॉल्स अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा पांव है, मेरा हाथ है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सब प्रकार की इस भौतिक जो परिचय है उससे मुक्त होना, मुक्त होना इसका अर्थ है। लाइक अर्जुन ऐसा सोच रहा था, मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरा शरीर है, तो किसी का वध कैसे करूंगा, तो हाउ कैन आई यूज दिस हैंड एंड लेग टू किल देम, कृष्णा आई विल नॉट फाइट, दिस इज इग्नोरेंस। भगवद गीता खत्म होने के बाद क्या करिष्ये वचनम तुम, कृष्णा आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। सो मुक्ति उसको बोलते हैं स्वरूप में व्यवस्थिति, अपने आप को कृष्ण भावना में स्थिर करना, दैट इज मुक्ति। सो अनदर मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज दैट इफ कृष्ण हैज लेग्स हैंड्स, कृष्ण के हाथ पांव नाक सब कुछ है, राइट, तो शून्य कहां पर है? वेयर इज दिस कंसेप्शन इन भगवद गीता वॉइडिज्म, वेयर इज दैट? द रास्कल सेज गॉड इज इम्पर्सनल, ही हैज नो फॉर्म, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि भगवान को शरीर नहीं है? यहाँ पर बोलते हैं सब जगह हाथ है, सब जगह पांव है, इफ ये हैंड्स एंड लेग्स एंड ईयर्स एंड हेयर्स, तो निराकार कैसे हुआ भगवान कृष्ण? देन इज हमारा, उनका शरीर हमारे शरीर से अलग है, हमारे हाथ लिमिटेड है, उनका हाथ अनलिमिटेड है, तो इसलिए जब कभी हम निराकार की बात करते हैं इसका अर्थ होता है वो हमारे जैसे आकार नहीं रखते। Missing everything, with this Arjuna Tishthati. Okay, text number 15.
परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी बना सकते हैं, वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं।
So, ये वही परमात्मा, ये आत्मा के लिए एक्चुअली ये यूज ही नहीं हो पाता है, तो नहीं तो सारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी अगर आत्मा के लिए इसको उपयोग किया जाए तो। सो यहाँ पर भगवान बोलते हैं उनको कोई इंद्रियां नहीं है, तो इंद्रियां नहीं है मीन्स उनको भौतिक इंद्रियां नहीं है। कृष्ण से यस आई हैव इंद्रिया, आई कैन सी एवरीथिंग, आई कैन हियर एवरीथिंग, इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन विदाउट आईज टू सी? भगवान कहते मैं सब कुछ देखता हूँ, पत्रम पुष्पम फल मैं सब कुछ खाता हूँ, इज देयर एनी सच आइडिया? ये आंख नहीं है फिर भी देखता है, ऐसा कहीं सुना आपने? ये हो ही नहीं सकता। वो ऐसा है कान भी ना, इसका किसी का कान नहीं हो सुन पा रहे हैं, नो, ही हैज आईज इयर्स लेग्स हैंड्स एवरीथिंग, सर्वेंद्रिय गुण भाषम, वो सबके मूल है, उनके पास है तब तुम्हारे पास है। He has no material senses. ये बात को प्रभुपाद बहुत बल दी है। फॉर एग्जाम्पल भगवान, इग्नोरेंट पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ मटेरियल, विदाउट अ मटेरियल बॉडी देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बॉडी। भौतिकवादी व्यक्ति, अज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग ये समझ नहीं सकते कि आकार भी आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि उनका आकार है तो वो समझ। तो उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ये है कि जैसे भगवान अर्च वगैरह के रूप में आए तो आप उनको देख सकते हो, यू कैन सी हिम, So because we have learned to see wood, stone, earth, solid materials, we cannot see subtle things. हम आदत ही है लकड़ा पत्थर ये सब देख रहे. तो अभी हम जाते हैं मंदिर में तो हमें वो मार्बल दिखता है, राधा गोविंद जी का मूर्ति सफेद मार्बल दिखता है, पत्थर ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते. हम आदत ही है उसके पत्थर देखने के. प्रभुपाद जी सेइंग लाइक दिस, एवरीवन नोज वी हैव अ माइंड. सबको पता है आपके पास दिमाग है? है. मेरे पास दिमाग है, क्या मेरे दिमाग को देख सकते हो? तो इसका अर्थ है कि नहीं है. इसका अर्थ ये हुआ. तो प्रभुपाद जी इज यूजिंग दिस एग्जांपल. सबके पास अहंकार है, क्या मैं आप मेरे अहंकार को देख सकते हो? क्या मैं आपके अहंकार को देख सकता हूँ? फिर भी है ना. तो ये भौतिक चीज, अहंकार तो भौतिक है, तो उसको आप देख नहीं सकते, सब सूक्ष्म है. तो आप मूर्ति में भगवान को कैसे देख पाओगे? कैनॉट अंडरस्टैंड दैट वे. सो वी कैनॉट सी सटल मटेरियल थिंग्स, व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स. स्पिरिचुअल थिंग्स आर मोर सटल देन मटेरियल. इंद्रियाणि परान्याहुर परस्तस्तु सह. हाँ, तो स्पिरिचुअल जो आत्मा होता है वो बुद्धि से भी पर है. इसलिए अदस श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहण. इसलिए कृष्ण को अपनी स्थूल इंद्रियों से आप समझ नहीं सकते. यू कैन सी ओनली प्रेमान जन छुरी भक्ति विलोचन, तभी आप समझ सकते हो. हाँ, स्थूल इंद्रियों से हरिनाम जप सकते हैं. यही एक स्थूल इंद्रियों का एकमात्र कार्य, और कुछ नहीं कर सकती इंद्रियों के माध्यम से. हाँ, इसी का प्रभाव, और किसी का प्रभाव नहीं. आप जो हरिनाम जप करते हो, आप नवदा भक्ति में अपने आपको जोड़ते हो, उसी का प्रभाव है. लेकिन स्थूल इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती. जब तक उसको कृष्ण के साथ जोड़ा नहीं जाता, तब तक वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकती. ऐसा नहीं कि आप मनुष्य के शरीर में हो और आप किसी देवताओं के शरीर का उपयोग कर सकते हो. यू कैनॉट डू दैट, यू हैव नो चॉइस. नथिंग इज निराकार. वी हैव आकार, यू हैव आकार, वाई कृष्ण इज निराकार? अपने पास आकार. हम प्रभुपाद से यू ऑल्सो हैव आकार, 10,000 साइज ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, बट यू कैंट सी इवन द टिप ऑफ द हेयर. फॉरगेट अबाउट द 10,000, यू कैन नॉट इवन सी. आप 10वें बाल के अगर भाग को भी नहीं देख सकते. सो देयर इज आकार, बट यू डोंट हैव आईज टू सी. आपके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, अनफॉर्चुनेटली. व्हाट कैन बी डन? सो या सो नेक्स्ट श्लोक.
हम सत्य स्थावर तथा जंगम समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर स्थित छे, जो सूक्ष्म होने कारण भौतिक इंद्रियों द्वारा जोई के जानी सकाता नहीं, अति दूर हुआ छता तेओ सहमी नजीक पहुंचे.
या तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन भगवान बताना शुरू कर दिया. जिनको कोई जान नहीं सकता उनको जानो, जो सबसे दूर है वही है तुम्हारे पास में है. ही इज यूजिंग सच कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड. ईशोपनिषद में ऐसा सब बताया, दूरस्थम तद अंतिके, अर्थात जो बहुत दूर है वो सबसे करीब भी है. ही इज सेइंग बार बार, बट नाउ इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. ये शास्त्र के ऐसे वर्णन है, बट नाउ लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग अबाउट इट. बहिरंतस्य भूतानाम, आई मीन आई एम टॉकिंग फ्रॉम द वन लेक्चर, यू हैव टू अंडरगो ऑस्टैडिस टू सी हिज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इफ यू अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफी, योर लाइफ इज सक्सेसफुल. आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, नांतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम. भगवान कहते हैं कि आई मीन ये शास्त्र का वर्णन है कि आराधितो यदि हरि, भगवान की सेवा करते हो तो तपस्या की क्या आवश्यकता. भगवान की सेवा से सेवा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, तो तपस्या का क्या महत्व क्या है? आपके अंतर और बहिर में हरि है, भगवान है, तो फिर तपस्या की आवश्यकता? आप अंतर के, आपके अंतर का और बाहर आप भगवान का चिंता नहीं करते, तो आपकी तपस्या का मूल्य क्या है? तो इस तरह से ये एग्जाम्पल रूपा दिए, अगर आप कृष्ण को अंतर और बहिर दोनों देख सकते हो तो आपकी तपस्या समाप्त होगी। सो इस तरह से अलग अलग प्रकार के धर्म नब्बे मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन प्लैनेट, हम लोग इससे 90 मिलियन माइल्स से दूर है। वी कैनॉट टच द सन साइन, हम लोग सूर्य प्रकाश, वी कैन टच, हम सूर्य प्रकाश को छू सकते हैं, बट कांट टच सन प्लैनेट, हम सूर्य के ग्लोब को नहीं छू सकते। ऑल दो द प्लैनेट इज देयर, पर हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं उधर जाने के लिए। दिस इज पॉसिबल पोजिशन ऑफ फॉरेड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज स्टेटेड ब्रह्म संहिता पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम, अर्थात मन की गति से आप आपका प्लेन चलाओ मन की गति से, फिर भी यू कैन नॉट रीच देयर। यू आर डेली सीइंग द सन बट यू डोंट हैव पावर टू गो देयर, रोज देखते हो बट नहीं जा सकते उसके पास। सो फॉरगेट अबाउट गोलोक वृंदावन, यू कैन नॉट कैलकुलेट द अबोड ऑफ गॉड दूरस्थम। इवन इफ यू गो इन योर एयरप्लेन एट द स्पीड ऑफ माइंड, आपके मन की स्पीड से जाओगे, वायु रथ एयरप्लेन इज गिवन वायुरथ वायोरथ वायोरथपि मनसो नहीं, स्टिल यू कैन नॉट अविचिंत्य तत्व, फिर भी वो अविचिंत्य रहेगा, उसको आप समझ नहीं पाओगे वायु, दैट इज कॉल्ड दूरस्थम। और उसके साथ साथ अंतिके, सबसे दूर है, बहुत दूर है, गोलोक वृंदावन सूर्य तक नहीं पहुंच सकते, गोलोक वृंदावन तक कहां पहुंचोगे? अंतिके, और कोई है नहीं इतना नजदीक आपका जितना भगवान आपके नजदीक आते, वेरी नियर, जस्ट लाइक कृष्ण स्टैंडिंग हियर, प्रभुपाद बता रहे कृष्ण स्टैंडिंग हियर इन राधा गोविंद टेम्पल, बस नीचे उतरो लिफ्ट या उतरो नीचे सेकंड फ्लोर से थोड़ा सा पैदल चलो राइट साइड में सीधा मंदिर आ गया, कितना पास में, कोई व्हीकल की भी आवश्यकता नहीं, जस्ट गो एंड सी कृष्ण, यू कैन टच हिज फीट, आप उनके चरण भी स्पर्श कर सकते हो, आप उनको भोग लगा सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो। सो ही हैंड्स एंड लेग्स आर एवरीवेयर, सब अपानी पाद जवनो ग्रहित्वा, उनके पास अपानी पाद, उनके कोई हाथ पांव नहीं है फिर भी उनके हाथ पांव है, जब आप उनके हाथ पांव नहीं है लेकिन आप जो यज्ञ करते हो तो एक्सेप्ट करते हो, कैसे करते पदांत के। सो दिस इज द पॉइंट, वेदेशु दुर्लभम, अपने भक्तों के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से आप कृष्ण को समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो फिर वही दूरस्थम दूरस्थम दूर रहेंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कृष्ण के बारे में। लेकिन जैसे आप कृष्ण भक्ति में आते हो, इस्कॉन में आते हो, भक्तों के संगत में आते हो, तो दंत के सीधा आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं कृष्ण। सो फर्दर टेक्स्ट नंबर 17 और 18 ओके।
परमात्मा सर्व जीवों विभाजित हो, कदापि विभाजित नहीं, एक तरीके स्थित है, दरेक जीवना पालन करता है, छतां सर्वना संहारक है और सर्व जीवों ने जन्म आपना है।
यस, सो एक सूर्य का उदाहरण आप ले सकते हो, All the super appears to be divided among all beings. Some water. सूर्य आकाश में है राइट, लेकिन सब उसको देख सकते हैं, यहां पर भी सूर्य दिखाई दे रहा है, बड़ौदा में भी दिखाई दे रहा है, लड़ाख में भी दिखाई दे रहा है, राइट, रामेश्वर में भी दिखाई दे रहा है। तो सूर्य एक ही स्थान पर है, लेकिन ये मेरा सूर्य, अहमदाबाद का सूर्य, वो उधर का सूर्य, ऐसा नहीं है। सेम सूर्य, एक ही सूर्य है, जैसे चंद्र होता है, एक ही चंद्र है। अब मायापुर में जो चंद्र को देखते हो तो वो सेम ही मायापुर चंद्र, वो वृंदावन से आपको चंद्र को देखते, अहमदाबाद से चंद्र को देखते, सेम चंद्र, सेम मून, वही व्यक्ति है, लेकिन वो अलग अलग दिखता है, सबके लिए अलग अलग है, ऐसा दिख रहा है इसी तरह से, लेकिन वो है एक ही व्यक्ति। जैसे परमात्मा एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो सबके हृदय में विराजमान है। जैसे हमने बताया था ना कि यहाँ पर 18 तक केवल परमात्मा का ही वर्णन आ रहा है, यहाँ पर कोई आत्मा का वर्णन नहीं। तो सबके हृदय में विराजमान होने के साथ साथ वो एक ही व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि आपका परमात्मा मेरे परमात्मा से थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है। आपके परमात्मा को रबड़ी पाता है, मेरे परमात्मा को पाव भाजी पाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी परमात्मा एक जैसे ही, दे आर ऑल सेम, सभी परमात्मा। ओके, टेक्स्ट नंबर 18।
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और गोचर है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है।
यस, नाउ फाइनली कृष्णा 18वें श्लोक में क्लियर बता दिया कि ये परमात्मा की बात हो रही है। हु इज हृदय सर्वस्य, सबके हृदय में है। प्रभुपाद ने पहले से ही इस विषय में बल दिया, बिकॉज प्रभुपाद इज आचार्य। तो 18वें श्लोक में प्रभुपाद ने क्या देखा कि भगवान यहाँ तक परमात्मा की बात करते, तो 14वें श्लोक से ही शुरू कर दिया प्रभुपाद ने, दिस इज टॉकिंग अबाउट परमात्मा, डोंट मिसगाइडेड, डोंट मिसलीड योरसेल्फ, रोज मीन्स डायरेक्ट। यहाँ पर प्रभुपाद परमात्मा को तो बता देते, कृष्णा ऑल्सो एम्फसाइज द सेम वे। सो प्रभुपाद सेज सेवरल वर्सेस फ्रॉम द श्वेतासुर उपनिषद में से कुछ श्लोक प्रभुपाद यूज किए हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसमें कि श्वेतासुर उपनिषद टू सप्लेन द दिस गीता टेक्स्ट हैव बीन डिस्क्राइब नीदर द लिविंग एंटिटी नॉर द ब्राह्मण। अर्थात यहाँ पर जो जिसकी बात हो रही है वो ना ही आत्मा है, ना ही निराकार ब्रह्म है, लेकिन परमात्मा। टॉकिंग अबाउट दैट, तो 18वें श्लोक में सभी प्रकार की जो लाइट है वो ब्रह्म से आती है, ब्रह्म से देखा जाए, सभी प्रकार के लाइट। जैसे अभी 6 लाइट है इधर, है ना, तो ये 6 लाइट वो भी ब्रह्म से आती है। ये सूर्य का प्रकाश जो आता है वो भी ब्रह्म से आता है। चंद्र के जो प्रकाश जो कहां से आता है, सूर्य से आता है, राइट। ये जितने भी तारे हैं उन सब का प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से। लेकिन सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति से आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सूर्य आकाश में है और सूर्य का किरण अगर मेरे सामने आ रहा है डायरेक्ट, और मेरे सामने एक बड़ा सा मिरर है और मैं वो मिरर उठाता हूं, तो क्या लगेगा, सूर्य जैसा प्रकाश मिरर में से आएगा, राइट, आप देख नहीं पाएंगे, सूर्य जैसा प्रकाश आएगा मिरर में से, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी तरह से सूर्य जो है वो भी रिफ्लेक्ट ही कर रहा है, वो भी एक मिरर लेके खड़ा है लाइक दैट, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्रह्म ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश उसके ऊपर जाता है और सारे संसार में रोशनी फैल जाती है। इन दैट वे प्रभुपाद हैज गिवन वंडरफुल पर्पस ऑफ दिस। सारी सॉरी लेक्चर Prabhupada has given one lecture on that, Bombay mein. So I just get the point, some point out of it. There are different grades of jyoti. There is a supreme jyoti, just like the moon has illumination. You know, jo maine reflection wali baat batai, wo Prabhupada ji lecture mein batate hain. So sunshine is source of all light, and the sunshine, jyoti, prakash, ye kahan se aata hai, Brahma. Actually, Brahman ka jo नेचुरल स्थिति है वो है डेंस डार्क, एक बार आपको मैंने पूछा था, इफ यू रिमेम्बर, व्हाट आई डोंट नो वेदर आई आस्क यू और नॉट, डेंस डार्क किसी का अनुभव है? देखा है डेंस डार्क, घोर अंधकार कहीं देखा है आपने? नहीं देखा? घोर अंधकार कोई कोई जगह याद है आपको कि एक जगह पर मैं गया था वहां पर घोर अंधकार था? आपने तो देखा ही होगा। यस,
जूनागढ़ में गए तो वहाँ राजा का जो महल होता है तो उसके नीचे पूरा घोरे में लेके तो कुछ भी लाइट नहीं था, वो लेके टॉर्च लेके जाना पड़ता था, अगर टॉर्च बंद कर दो तो कुछ नहीं दिखेगा,
कुछ नहीं, धरती कहाँ है, आकाश कहाँ है, दीवार कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कुछ नहीं,
हाथ लगाना ज्यादा पड़े कि भी दीवाली है, आगे दीवाला आ गई है या बुढ़ने का है, कुछ नहीं पता।
सो डेंस, राइट, यू रिमेम्बर, आपको याद है? डेंस एकदम। अच्छा, आप स्कैरी हाउस में भी जाते थे? ओके, उसके पहले हाँ, लेकिन जाते थे ना स्कैरी हाउस, स्कैरी है, यस, गो अहेड, बोलिए बोलिए, उसमें क्या था?
उसमें पूरा अंधकार था एकदम से, फिर वो ऐसी आवाज आती थी और एकदम से वो भूत जैसा डरावना।
बाप रे बाप, क्या हुआ फिर आपका, क्या हुआ?
नहीं, मैं इतना डरता नहीं था।
वाह, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो व्हाट इज योर डांस, राइट, और एकदम कान, आपने आपने नहीं देखा, आपने देखा? आप भी इसके रियाज गए थे कहाँ पर? हम भी याद है, चलो कहाँ, बिग बाजार में, कहाँ पर है? अच्छा, तो किसके लिए रखा, कोई प्रोडक्ट बेचते क्या वो लोग उधर? ओके, फिर और कोई डांस डार्क देखिए, और कोई डांस डार्क किसी को याद है?
ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल है, वहाँ वो वैदिक एक्सपो है, वहाँ पे जब हम प्रवेश करते हैं वैसे ही होता है, फिर वो शुरू होता है एक्सपो।
अच्छा, एकदम डार्क हो जाता है, फिर अचानक से प्रकाश आता है। यस, वो भी एक है। फिर
एकदम लाइट चलती
है रात को, लाइट गई है कभी? ऐसी वाली नहीं, लेकिन तो पड़ोसी की लाइट होती तो नहीं चलेगा। पूरा डांस हो रहा है, टोटल ब्लैकआउट, फुल ब्लैकआउट, कहीं से भी, कहीं थोड़ा भी नहीं आना चाहिए।
जब सो जाते तब अंधकार नहीं होता।
अच्छा, लेकिन आंख तो बंद हो जाती है ना फिर, आंख खुली रखनी है, खुली रख के जाते हैं। दैट मीन्स ये मटेरियल पूरा डांस है, एकदम डांस। मैंने आपसे आई वुड शेयर, माय फादर आल्सो शेयर्ड वंस, एक बार बता रहे, अहोबिलम में हम गए थे, नरसिंह देव का मंदिर है, तो अहोबिलम में पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे और इतना रिमोट जगह है, सो डांस, एकदम एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा, पर्वत है, आकाश कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ नहीं। सिमिलर एक्सपीरियंस आई है, हम लोग रात को करीब 11 बजे आई थिंक, रात को 11 बजे अमेरिका के एक बहुत ही गहन, हाँ, एक अमेरिका के एक बहुत ही गहन एक फॉरेस्ट में गए थे, एक डिवोडी के घर पे हम गए थे नाइट स्टे करने, कैलिफोर्निया था ये, तो अलाजवा दूसरा है कैलिफोर्निया, तो उसमें इतना डेंस फॉरेस्ट था, एक आदमी तो चलो भूल ही जाओ, आदमी तो मिलेगा ही नहीं कहीं पर, जो सो डेंस फॉरेस्ट, इतना घना जंगल, आप आसमान में भी पत्ते ही दिखेंगे पेड़ के, इतना डेंस फॉरेस्ट, और उसके अंदर उनका घर था, वो रहते थे, और हमारा नाइट स्टे उनके पास था, हम उनके घर में रात रुकने वाले थे जंगल के भीतर। सो वी वेंट देयर, सो आई वाज लाइक, डैरन को कहा कि अभी इज वेरी डेंस, हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो इसे ओ यू वांट टू सी हाउ इट डेंस, गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी, ना यू सी, कुछ नहीं दिखे, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये सृष्टि जो है, वो ऐसी डेंस है, इतना ही डेंस है, मीन्स ये वास्तविक स्थिति उसकी ऐसी है। तो फिर प्रकाश सूर्य के माध्यम से भगवान अपना प्रकाश देते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में, सो दैट इज सन ग्लोब, द रेज इमिनेटिंग फ्रॉम कृष्णस बॉडी, That is sun planet. Sun planet looks fiery. Prabhupada is giving a very interesting thing. कि सन साइन कहां से आती है? सन ग्लोब से. और सन ग्लोब जो है वो इल्यूमिनेटेड है अग्निमय, लेकिन हमने बताया कि वो तो परम ज्योति का प्रकाश उस पर आता है. तो क्या होता है कि वहां के रहने वाले लोग जो है, सन प्लेनेट में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश पड़ता है और उनका शरीर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. दैट बिकम सनशाइन सन प्लेनेट से. ओके, जो शरीर वो रिफ्लेक्ट करते हैं. दैट इज सन ग्लोब, आई मीन दैट इज द सनशाइन. तो ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश उनके ऊपर गिरता है. Therefore, the whole planet, sun planet, it looks fiery. ये पूरा अग्नि में आपको दिखता है, एक्चुअली है नहीं, वो आपको दिखता है. बिकॉज यू गो देयर एंड इट इज सो, इतना प्रकाश है, यू कैन नॉट टॉलरेट. सो दैट इज द मून एंड दैट, फॉर जो मून रिफ्लेक्ट होता है, दैट बिकम्स पूर्णिमा. और पूर्णिमा का चांद बड़ा प्रकाश में, वो सूर्य का प्रकाश है. सो दे आर वन इज बोरोइंग इल्यूमिनेशन फ्रॉम अनदर. एक प्रकाश रहता है दूसरे से, चंद्र सूर्य, सूर्य रहता है ब्रह्म ज्योति. देन ऑल्सो प्रोपोसेड वन मोर थिंग, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देर इज नो डार्कनेस, क्योंकि भगवान का प्रकाश ही इसमें. मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है, तमस पर देर इज सेड दैट तद ज्योतिष तमस परमुच्यते. The spiritual world is beyond this material world. Tamaham is darkness. Just like it is dark at night. Why it is dark? Nature dark hai. Prastasmastu bhavanya. Ek dusri prakriti hai jo dark nahi hai. Jo andhkar wali nahi hai. To Bhagwan ke sarir se ye utpann hoti hai. Isliye it is so effulgent. Now Prabhupada is also giving one more, and that sun sign, there is vegetation, there is water, there is rainfall. From the rainfall, agriculture products. This is all coming from sunshine. है ना? Sunshine से ये सब आता है. पानी, बरसा, अन्न, पृथ्वी से उत्पन्न जो प्रकट होने वाला सारा खेत, खेती वगैरह सब कुछ sunshine. सनसाइन. और सनसाइन कहां से आ रहा है? भगवान का प्रकाश. भगवान के प्रकाश को क्या बोला जाता है? ब्रह्म ज्योति. ब्रह्म ज्योति
में भी उतनी गर्मी है जो सूर्य से.
यस यस यस. सो योग्य लोग को ब्रह्म ज्योति के लिए वो तो विलीन होने जाते, फिर धक्का मार के फेंक दिया जाते, नीचे आ जाते. दे कैन नॉट स्टे देयर, वो उधर रह नहीं सकते, अपने आप ही गिर जाते. सो ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण, ये चक्षुरेश भगवान की आंखें है, सूर्य चंद्र सविता, ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण, ये सूर्य भगवान की आंखें है, इसलिए भगवान के द्वारा ही सर्व खलु इदम ब्रह्म बोलते हैं ना, सब कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ. तो इसलिए हुआ क्योंकि भगवान की ज्योति ब्रह्म सूर्य के प्रकाश के रूप में आती. नाउ प्रभुपाद सेज अनदर कनेक्टेड पॉइंट. सम पीपल से कैन यू शो मी गॉड, क्या भगवान को दिखा सकते हो? लेकिन वो अपनी आई साइट की दुर्बलता का विचार नहीं करते. अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता तो आप कुछ देख ही नहीं सकते. आपने तो पहले सोचो कि आपकी आंखें ऐसी कमजोर है और भगवान को देखने की बात हो रही है. आई कैन नॉट सी गॉड, देयरफॉर गॉड कैन नॉट बी सीन, देयरफॉर आई डोंट बिलीव इन गॉड. मैं भगवान को नहीं मानता हूँ इसलिए. बट वी डोंट थिंक ऑफ आवर आई साइट, सिंपली डार्कनेस है. इसलिए तपसोमा तो इस तरह से अगर अपनी इंद्रियों पर बहुत आपको प्राउड है तो आपकी आंख तो सूर्य के बिना देख नहीं सकती. फिर दूसरा एक चीज प्रभुपाद कह रहे थे ब्रह्म से, ब्रह्म ज्योति को लेकर के, कि कृष्णा का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति एंड दैट कम्स टू सूर्य. तो ये सूर्य का प्रकाश इधर आता है, लेकिन आसमान में जो ब्लू कलर आप देखते हैं ना, ब्लू शेड, स्काई इज ब्लू, ब्लू शेड, दैट इज बिकॉज कृष्ण इज ब्लू, उनके अंग का प्रकाश है ना ये, तो उनके अंग का प्रकाश है वास्तव में ये स्काई जो है उसका अपने आप में तो कोई कलर नहीं है, स्काई का आपके अपने आप में कोई कलर नहीं, तो खाली एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी स्पेस, उसका अपने आप का कोई कलर नहीं है स्काई का, लेकिन वो ब्लूशनेस तभी दिखती है जब सूर्य प्रकट होता है, सूर्य आता है तभी वो ब्लू दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है, तब तो काला ही दिखता है, दो कलर नहीं है स्काई का, एक भी कलर नहीं है, एक ही है उसका डार्कनेस, एम्प्टी, बट एज सून एज सनशाइन इज कमिंग दैट मीन्स कृष्ण का प्रकाश आता है इधर, सो दैट बिकम्स ब्लू, दैट टर्न्स आउट ब्लू बिकॉज कृष्ण इज ब्लू, तो इसलिए आई रिमेम्बर माई ब्रदर माई फादर यूज टू टेल पापा ब्रदर कि माई ब्रदर जब बहुत छोटा था यूज टू आस्क क्वेश्चन वाई द स्काई इज ब्लू, ऐसे प्रश्न पूछते थे मेरे पेरेंट्स को, आसमान का कलर ब्लू क्या, वो बच्चे लोग सोच लगते थे सब लोग उनके साथ जो होते बड़े होते, ये क्या क्वेश्चन पूछा इसको क्या उत्तर दिया, व्हाट टू आंसर, व्हाई इज ब्लू, बिकॉज इट इज ब्लू, दैट इज देयरफॉर इट इज ब्लू, ये आंसर दिया, सो बट एक्चुअली नाउ यू नो द आंसर व्हाई इट इज ब्लू, बिकॉज इट इज कृष्णस रिफ्लेक्शन, जैसे सूर्य का प्रकट होता है तुरंत आपको ब्लू शेड दिखने लगता है, तुरंत ब्लू शेड दिखना, दैट इज कृष्ण, सो यू कैन नाउ रिमेम्बर कृष्ण राइट, सूर्य कल सुबह अभी अभी पता नहीं ब्लू दिख रहा है तो सूर्य प्रकाश बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बादल भी होगा शायद, जैसे बादल चले जाएंगे सो यू विल सी द ब्लू स्काई, ओ कृष्ण, कृष्णस रिफ्लेक्शन, कृष्ण का रिफ्लेक्शन है बॉडी का, दैट्स द पॉइंट, सो पावर इज गिवन दिस वंडरफुल सब्जेक्ट, सो केवल भक्तों के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है, भक्ति के माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है, सो दैट पॉइंट इज डिस्कस इन टेक्स्ट नंबर 19, पढ़िए,
प्रमाण में कार्य क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञेयनु संक्षिप्त वर्णन करी छे अने केवल मारा भक्त पूर्णपणे समझी सके छे अने ए रीते मारा भाव स्वरूप ने पामे छे,
यस केवल मेरे भक्त ही इसको समझ सकते हैं, मद भक्त प्रपद तात्पर्य में कन्फर्म करते हैं, द लॉर्ड हैज डिस्क्राइब्ड इन समरी द बॉडी knowledge and the knowable, this knowledge is of three things, gnan mein teen, I think I am reading purport only but just two lines, the knower can you have to open it, aap kahan padhiye tatpurya,
bhagwan ne sharir gyan tatha gyay ka sankshep mein varnan kiya hai,
amit to
yah gyan
tha tha kam kar do, yes go ahead,
yah gyan teen vastuon ka hai, ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने की विधि, ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं, पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष तरह समझा जा सकता है,
फिर से पढ़िए ज्ञान के तीन चीज को फिर से रिपीट कीजिए,
यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने की विधि,
आप समझे तीन चीज ज्ञान की विषय बात हो रही है तब, यस गो अहेड,
पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष तरह समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं, अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते, ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावना रूप में समझना, हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं लेकिन यूं ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्य में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है, 15वें
अध्याय
में इसकी
विशेष व्याख्या की गई है। सो 6-7 में जो बात बताई है तो उसमें मैनिफेस्टेशन सर्टेन मटेरियल एलिमेंट्स एंड सिम्टम ऑफ लाइफ उसकी चर्चा हुई है, फिर 8-12 जो है उसमें हमने चर्चा किया था क्षेत्रज्ञ विषय में सुपर सर सो आज के बारे में वो ज्ञान की परिस्थिति है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, और उसके बाद फिर क्षेत्र में। तो इस तरह से तीन चीज मुख्य रूप से चर्चा की, तो क्षेत्र, ज्ञान की विधि और दोनों बोध सोल एंड सुपर, आत्मा और परमात्मा। लेकिन ये सब बात को केवल भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए भगवत गीता उन लोग के लिए यूजफुल हो जाती है क्योंकि भगवान को समझाने में सहायता देते हैं। अर्थात दूसरे कोई व्यक्ति भगवत गीता का सही अर्थ समझ नहीं पाते अगर वो किसी भक्त की सहायता नहीं लेते, तो गलतियां कर बैठेंगे इसके अंदर, आत्मा को परमात्मा एक मान लेंगे, ऐसी सब गलतियां कर बैठेंगे। 80-90% जो भी मटेरियलिस्टिक कमेंट्री करने वाले, भगवत गीता पे टीका लिखने वाले, बहुत सारे टीका है सब, आप उसका चेक करना चाहते हो कि वो व्यक्ति वैष्णव अनुकूल है या नहीं, 13वां अध्याय खोल करके चेक कर लो, आपको पता पड़ जाएगा कि वो मायावादी है या नहीं, यही गलती करे बैठेगा। अगर वो वैष्णव सिद्धांत को नहीं मानता है, इधर गलती कर देगा वो 13वें अध्याय में। सो वी कैन गो फर्दर, वी वांट टू स्टॉप, इट इज 5:30, सेक्शन यहाँ खत्म हो जाता है। यू कैन टेक वन मोर श्लोक, लेट्स सी 20 नंबर।
प्रकृति तथा जीवों को अनाज समझना चाहिए, उनके विकास तथा गुण प्रकृति जन्य है।
तो अभी 20 और 27 से लेकर के 9 प्रकृति और पुरुष की चर्चा होने वाली है। तो प्रकृति और पुरुष की बात हुई थी ना, अर्जुन ने पूछा था, नौ प्रकृति और पुरुष की चर्चा करते हैं भगवान। उनका भगवान अपना जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन, वो प्रकृति के माध्यम, प्रकृति के रूप से शुरू हुआ, प्रकृति के विषय में, और फिर बाद में 20 से 22 और फिर 24 उसमें पुरुष के विषय में बताते हैं, और 23 में परमात्मा का पार फिर से बताते हैं। तो भगवान का और प्रकृति का जो संपर्क में आना है, जो ये जुड़े हैं एक दूसरे से, वो अनादि है, लाइक टाइम बिगिनिंगलेस, प्रपद तात्पर्य में कहते हैं। एक्चुअली द लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली द स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यू कैन यू फाइंड दैट, आई डोंट रीड दैट, ओके, बट ड्यू टू दिस रिबेलियस नेचर, हिज कंडीशन विद इन मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल नेचर, रिबेलियस नेचर का वो कंडीशन है। इट रियली डज नॉट मैटर हाउ दिस लिविंग एंटिटी और सुपीरियर एंटिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैव कम इन कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल नेचर, दैट मीन्स इट डजेंट मैटर, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कब आए थे, कैसे आए थे हम प्रकृति के संसर्ग में। द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हैड नोज हाउ एवर हाउ एंड वाई दिस एक्चुअली टुक प्लेस। प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट रूप बताते हैं कि कई लोग को ये जिज्ञासा होती है, मैं जीव, प्रभु जी जीव प्रकृति के संपर्क में कैसे आया। तो प्रभुपाद हैज गिवन वंडरफुल आंसर, प्रभुपाद सेज डजंट मैटर टू नो, इसे जानने से कोई फायदा नहीं होगा कि कैसे आया, भगवान पूर्णतः जानते हैं कि क्यों और कैसे आए थे आप प्रकृति के संपर्क में। अर्थात जब आप भगवान को समझोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि आप कैसे आए थे। जनरली ये लोग इसमें फंस जाते, एक डिवोटी आया था मेरे पास, बोलते हैं प्रभु जी एक प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता, मैंने कहा बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा, तो ऐसा बताया कि कब आया थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि तुम्हारा प्रश्न ही बेसलेस है, इसको हम प्रश्न को हटाने दे रहे, लेकिन इस प्रश्न से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, यूजलेस क्वेश्चन यू आर आस्किंग। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि ये समझ लो कि हम किसी जगह पर बैठे हैं किसी घर में और वहां पर आग लग जाती है, तो चिल्ला चिल्ली हो रहा है, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, एक बोलता है फायर ब्रिगेड को कॉल करो, एक करो एक करो, फिर एक व्यक्ति वहां बैठा था, अरे ये आग कैसे लगी, ये आग कैसे लगी, तो आप उसको क्या कहोगे, पागल हो गया, आग कैसे लगी, अब पहले तो बाहर निकलो, ये घर से तो बाहर निकलो, सबसे पहले तो बाहर, ना मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, पहले मुझे बताओ आग कैसे लगी, पहले मुझे बताओ तभी इसका इसका रिजल्ट निकालो, एफएसएल को बुलाओ कैसे आग लगी थी तब जागे। ये फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, पैर फिसल गया, कैसे भी तरह से वो पानी में डूब गया, नदी में डूब गया था, डूब रहा था। और फिर उसको बोला तुम चलो मैं तुम्हें बचाना है, पहले मुझे ये बताओ मैं डूबा कैसे, मैं डूबा कैसे। बोले मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम बाहर आओ ना, पहले बताओ मैं डूबा कैसे। मूर्ख व्यक्ति, इट्स लाइक दैट। तुम इसमें आए कैसे, तो ये क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आए, या हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, दैट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो जीवात्मा और भगवान दोनों ही शाश्वत है और उनका परिवर्तन नहीं होता, केवल विकार केवल प्रकृति को होता है, जीवात्मा को विकार नहीं होता है, भगवान को विकार नहीं होता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, ये प्रकृति को होता है, आत्मा को नहीं होता, आत्मा हमेशा विकार रहित रहता है। सो द रिलेशन बिटवीन द लिविंग एनर्जी एंड चेंजेस कॉज्ड बाय मटेरियल नेचर, जो प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होता है और उसका जीवात्मा के साथ जो संबंध है, अध्यक्ष नंबर 21 में बताया गया है। सो प्रकृति का विकार है, सो एनीवे विल डिस्कस फर्दर इसके विषय में। प्रभुपाद हैज गिवन वन लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस टेक्स्ट नंबर 20 के ऊपर, वी कैन डू इट नेक्स्ट थर्सडे, इसके ऊपर नॉट थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे वी कैन कीप, नेक्स्ट ट्यूसडे, यस यू वांट टू कंप्लीट, अभी दो तीन ट्यूसडे बस, एक आने वाले जो दो तीन ट्यूसडे उसमें हम कर सकते हैं। अब जस्ट टू माई अटेम्प्ट इज टू कंप्लीट 18 चैप्टर बिफोर जन्माष्टमी, अगर हो सकता है तो, आई मीन इट्स नॉट प्रॉब्लम। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अटेंडेंस को लेकर के, तो हम फिर उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं मेजोरिटी को देख करके, देन वी विल नॉट स्टिक टू दैट, देन वी कैन कंटिन्यू आफ्टर जन्माष्टमी ऑल्सो, बट हमारा प्रयास है कि वी कंप्लीट बिफोर जन्माष्टमी। स्टॉप।